क्यों? सुप्रभात मित्रों, यह एक बहुत अच्छी सुबह है और यहाँ होने के लिए एक अच्छा समय है। मैं आज सुबह जीवित होने के लिए खुश हूँ और यहाँ फिर से सभा के साथ होने के लिए। ऐसे कम समय में बहुत सारी बातें घटित हो सकती हैं और हम नहीं जानते कि हमें किस समय पर उस बड़े न्यायालय में उत्तर देने के लिए बुलाया जाएगा, और हम किसी भी समय तैयार रहना चाहते हैं ताकि हमारे पास शांति हो सके। और जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत आभारी हूँ। निश्चय ही मैं रविवार रात को यहाँ पर था और लोगों से बात कर रहा था। मैंने रविवार रात को प्रचार किया और मैं भाई रॉबर्टसन और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे लोगों को जिन्हें बुलाया गया। आनंद लेने के विषय में रविवार की रात का संदेश, हमारे पास सारी चीजें हैं और इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बोलने जा रहा हूँ। बस नीचे आकर और भाई नेविल की ओर देखा, उसका गला एक प्रकार से एक भौरे की तरह भुनभुन आवाज कर रहा था। मैंने सोचा, बेचारा भाई, यदि वह निश्चित रूप से आज रात मुझे बुलाता है तो मैं सहायता करूँगा या जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वो करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह कैसा होता है जब आप थके हुए होते हैं और गला खराब होता है। और उसने उस सुबह जोर से प्रचार किया था और इसलिए मैंने रविवार रात उसके लिए प्रचार किया, और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब वहाँ वे बता रहे हैं प्रार्थना के लिए बहुत सी विनतियाँ हैं, और इसलिए आइए बस सबसे पहले उन्हें याद करें, इन सारी विनतियों को। आइए अब अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, ऐसा लिखा है कि हमें अपने हृदय में धन्यवाद के साथ आपकी सभाओं में प्रवेश करना चाहिए। हमारी विनतियों को संतों की सभाओं में सामने रखी जाएं, और आज सुबह हमारे पास उनमें से बहुत सी विनतियां हैं, बहुत सी जो हम नहीं जानते कि उन्हें आपके सामने कैसे रखी जाए, लेकिन आप उन्हें जानते हैं। बहुत सी ऐसी हैं जिनके विषय में नहीं बताया गया, आप उन्हें भी जानते हैं। इसलिए हम अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं, जैसा कि हमने पिछले रविवार रात को बहन शेपर्ड, भाई शेपर्ड की बच्ची के लिए प्रार्थना की थी। वहाँ जब वापस आकर पवित्र आत्मा ने कहा उसे कोई पोलियो नहीं है, वह ठीक हो जाएगी, जब हम आपसे सुनते हैं तो हमें क्या ही संतुष्टि मिलती है। अब हम आज सुबह आपसे मांगते हैं कि आप बीमारियों के लिए हमारी इन विनतियों को स्वीकार करें, शोकित घर के लिए, प्रिय जनों के लिए और उन सभी के लिए जो बोला गया है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को याद रखेंगे, और मैं अपनी प्रार्थना को और इन लोगों की प्रार्थना को आपके सामने रखता हूँ, एक साथ एकत्र होकर और आपके पास भेजते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता हमारी सुने, हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं आप में से हर एक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की है, जबकि मैं, आप जानते हैं कि मेरे पास वहाँ नीचे गोली चलाने के मैदान पर एक छोटा सा धमाका हुआ था और शैतान ने मुझे मारने की कोशिश की, और निश्चय ही वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर ने अभी तक मेरे काम को पूरा नहीं किया है, इसलिए वह इसे तब तक नहीं कर सकता जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। जब परमेश्वर का काम पूरा हो जाता है तब मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं, मेरे अच्छे मित्र भाई वुड वहाँ पर, यह तो बस परमेश्वर की दया है, नहीं तो उसका बस यहाँ से नीचे का हिस्सा ही मिलता और न कि यहाँ से ऊपर का। यह लगभग 5 या 6 टन का विस्फोट था जो कि मेरे मुंह के नजदीक था, इस तरह से मुझे जरा भी चोट नहीं पहुँची। देखा, मेरे चेहरे पर थोड़ी सी खरोच आई है, तो यह तो अब यह सब जा चुका है, वहाँ बस एक छोटा सा निशान ही बचा है। इसलिए मैं यहाँ पर भाई और बहन डाउच को धन्यवाद देना चाहता हूँ, भाई ब्राउन और वे लोग जो टेलीफोन पर बातचीत के द्वारा समझ गए कि वे एक साथ एकत्र होकर लोगों का एक झुंड और मेरे लिए प्रार्थना की। और यह बस कुछ तो है जो आपके लिए कुछ तो करता है। आप जानते हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और हर चीज के लिए, और फिर जब आपको पता चलता है कि कोई तो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है, तो ये बात बहुत बड़ा मायने रखती है। और मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों ने फोन किया या कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने भी उसी तरह से प्रार्थना की, और यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और यही कारण है कि मैं इससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। परमेश्वर मुझे चंगा करे, और इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। अब मेरे पास कुछ घोषणाएं हैं इससे पहले कि हम इन छोटे बच्चों को समर्पित करें। अब आज रात वहाँ आराधनालय में सभा है, और आप सभी जो यहाँ आराधनालय में आते हैं सीधे यहाँ सभा में आ जाएं, और इसलिए मैं आज रात भाई रुडेल के लिए बोलने जा रहा हूँ। यहाँ ऊपर महामार्ग पर जो हमारे एक आने वाले अतिथि भाइयों में से एक हैं। और फिर जैसे ही मैं वापस आऊँगा, यदि मेरे पास एक और रात होगी तो मैं भाई जूनी जैक्सन के पास जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो भाई जो सेलेसबर्ग में है, हम उसे वहाँ एक रात देना चाहते हैं और इसलिए हम वहाँ पर उससे मिलने के लिए जाना चाहते हैं। और वो भाई जो वहाँ यूटिका में है, उससे भी हम जब भी रात में मौका मिले उससे मिल लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह में ग्रीन बे विस्कॉन्सिन के यहाँ जाने के लिए निकल रहा हूँ, फुल गॉस्पल बिजनेसमैन के क्षेत्रीय कन्वेंशन में। अगले रविवार मैं उस हाई स्कूल में रहूंगा, वहाँ पर ऊपर जहाँ मैं पिछली बार वहाँ था। मैं उस हाई स्कूल के सभागार का नाम भूल गया, यह क्या है, माथेर, स्टीफन माथेर, जी हाँ। तो ठीक है, हाई स्कूल सभागार। और फिर सोमवार को मैं एक कन्वेंशन में रहूंगा, जहां पर मैंने उस सेवक लोगों की समिति के साथ चर्चा की थी शिकागो में। वहां पिछली बार हम भाई जोसेफ बोझ की विदाई की सभा के लिए उस स्थान पर होंगे जो तांगानीका जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि वो इसे तांगानीका कहते हैं, और केनिया और डरबन और वहाँ से होते हुए मेरे आने वाली सभाओं के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, और दक्षिण अफ्रीका में से होते हुए अफ्रीका में। और तब हम आपसे मांगते हैं कि इन सभाओं के लिए प्रार्थना में हमें याद रखें। उसके बाद हम वापस लौट आएंगे, और मैं नहीं जानता कि मेरे पास सभा को लेने का समय कहाँ होगा, किसी और दिन आराधनालय में या नहीं, इससे पहले कि हम उत्तरी कैरोलिना में जाएं और फिर वहां से दक्षिण कैरोलिना, और फिर वहां से होते हुए लॉस एंजेलिस में काउ पैलेस की ओर दक्षिणी गेट पर। और यही है जहां मैं आशा करता हूं कि वहां जाकर और श्रीमान वेदर बॉय से मिलूंगा, जिसने वह बंदूक बनाई जिसमें से गोली विस्फोट हो गई। उसने बंदूक में गोली डालने की जगह को पर्याप्त रूप से सही नहीं किया था और गोली को आगे जाने की बजाय पीछे की ओर धकेल दिया। यह एक पुरानी बंदूक थी जिसे मैंने हाल ही में उसे भेजा था। बाद में उसने उसकी नली को बड़ा करवाया और उसे एक अलग प्रकार की बंदूक बना दिया। मैंने इसमें गोली को डाला, गोली चलाने के लिए इसे ऊपर उठाया, और यह तब इसने बंदूक को मेरे चारों ओर 50 गज की दूरी तक विस्फोट कर दिया। इस तरह से मेरे हाथ में पिघल गई बंदूक की नली 50 गज की दूरी पर फटकर अलग हो गई। पिछला भाग सीधा हिरण के पिंजरे के पीछे चला गया। ये मेरे पीछे 30-40 गज की दूरी पर गिरा और छर्रे के टुकड़े उड़ गए और पेड़ों से छाल को उखाड़ दिया और बाकी की हर एक चीज को। तो यह मेरी आँख के इतना ही नजदीक हुआ था, बस लगभग 1 इंच की दूरी जहाँ से यह इस तरह फटा। और यदि यह फट गया होता, और वो बंदूक अपने आप में 1900 पाउंड दबाव को झेल सकती है बिना फटे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पर कितना जबरदस्त दबाव रहा होगा कि ऐसा हो गया। और याद रखना, यदि यह इसे उड़ाता है तो यह मेरे सिर और कंधों को भी उड़ा सकता था, आपने देखा। लेकिन वहाँ पर प्रभु खड़ा हुआ था, जिसने मुझे यहाँ तक चोट भी नहीं आने दी, बस मेरे चेहरे पर खरोच आ गई और एक छोटा सा छर्रा मेरी आँख के स्थान के नीचे चला गया, आँखों के चारों ओर एक घेरा बना दिया, सो इसने आँखों को नहीं छुआ जहाँ पर वो छर्रा अंदर गया था। उनमें से एक बड़ा टुकड़ा जो सिर की हड्डी में अटक गया, आँख के आसपास चला गया, हालांकि आग के अंदर नहीं गया। ओह प्रभु, ज्यादा समय नहीं हुआ, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि उसने मुझसे कमरे में भेंट की और कहा, डरो मत, क्योंकि यीशु मसीह की कभी न चूकने वाली उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है। देखा, देखा, तो यह इसे साबित करता है कि वो उपस्थित है। एक डॉक्टर जिसने लुइस विले में मेरी आँख की ओर देखा, उसने कहा कि उन्होंने हमारे मित्र डॉक्टर सैम अडायर को यहाँ वापस लिखा और कहा, मैं केवल एक चीज जो कह सकता हूँ कि प्रभु उस सुबह अपने सेवक के साथ उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ उपस्थित था, या तो यहाँ तक उसका सिर और कंधे भी नहीं बचते, इसलिए वो वास्तव में मेरे लिए भला था और मैं इसकी सराहना करता हूँ। यह बात मुझे उसके थोड़ा और करीब लेकर आती है, यह हमेशा ही थोड़ा भिन्न बनाती है। और फिर उसके 2-3 दिन के बाद जब मैं अपनी सभा के लिए जा रहा था जहां मैंने कनाडा में निर्धारित की थी, वो व्यक्ति इस विषय में बिना कुछ जाने मुझे वापस फोन किया और सभा को स्थगित करना पड़ा। देखा, यदि यह घटना इस तरह न घटी होती तो मैं वहां कनाडा के रास्ते पर होता, समझे। और इसलिए उसने फिर से वापस फोन किया और मुझे सभा को लेना है, कनाडा की सभा को, और ये जुलाई में होगी, जुलाई के अंतिम सप्ताह में। उसके बाद मैं डॉसन क्रिक जा रहा हूँ, उसके बाद एंकोरेज अलास्का, प्रभु ने चाहा तो। अब इन सभाओं में से किसी भी सभा में मेरे पास जाने के लिए कोई अगुवाई नहीं है, एक में भी नहीं, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता कि पूरी गर्मी यहीं बिताऊं, यहीं आसपास बैठे हुए, और हर जगह लोग मर रहे हैं। मुझे बीजों को बोना है, यह कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो, यदि यह ऊपर नहीं आता है, यदि उड़ने वाले पक्षी आकर इसे ले लें, चाहे जो कुछ भी हो, मैं बीजों को बोना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे बोने के लिए कुछ दिया है, इसलिए कुछ भी हो मैं बीज को बोने जा रहा हूँ। अब हमारे पास यहाँ एक समय है कि मैं बहुत से लोग जिसे वे मसीही विश्वास में छोटे बच्चों का बपतिस्मा देना कहते हैं, तो यह ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। निश्चय ही वे असल में उन्हें बपतिस्मा नहीं देते हैं, वे तो बस उन पर पानी का छिड़काव करते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं तो बाइबल में जो कहा गया है उसी के साथ बने रहना पसंद करता हूँ, इसलिए केवल जो वचन ने कहा यही है जो मैं करना चाहता हूँ, बस जो कुछ भी वचन कहता है। और अब मैं बाइबल में किसी स्थान में नहीं पाता हूँ, पुराने नियम में वे बच्चों को शारीरिक खतना के लिए लाते थे, छोटे नर बालक, और माँ शुद्धिकरण के लिए दो पिंडुकियों को या एक मेमना भेंट करती थी, लेकिन नए नियम में केवल एक ही स्थान है जो मैं इस महान सभा के स्मरणोत्सव के लिए देख सकता हूँ, यह एक समर्पण था। वे बालकों को यीशु के पास लाए और उसने उन्हें अपनी गोद में उठाया और उन्हें आशीष दी, यही है जो उनके माता पिता करते थे, और उसका जीवन एक उदाहरण था कि हमें क्या करना चाहिए, समझे, इन चीजों को उसने एक उदाहरण के लिए किया। अब हम बस छोटे बच्चों को लेते हैं और वे उन्हें हमारे पास लाते हैं और हम बस उन्हें परमेश्वर के सामने रखते हैं और उन पर परमेश्वर की आशीषों को मांगते हैं, और जब वे अपने छोटे बच्चों को सौंपते हैं माता और पिता की ओर से कि परमेश्वर से समर्पण की प्रार्थना करें और या उन्हें यीशु मसीह के नाम में समर्पित करें, जब तक कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए वे पर्याप्त बड़े न हो जाएं। और अब उसने कहा, जो कुछ भी हम वचन या काम में करते हैं ये सब यीशु मसीह के नाम में करें, इसलिए यही है जो हम करना चाहते हैं। और अब जबकि बहन धीरे से इस छोटे से गीत को बजाएगी, बहन जो यहाँ हमारे पास है उन्हें अंदर लाओ, और माता और पिता जिनके पास ये छोटे बच्चे हैं, जिन्हें कभी भी प्रभु को समर्पित नहीं किया गया है, यदि आप उन्हें अब लाएंगे, जबकि सभा के लोग, हम अब उनके लिए एक स्तुति के गीत को धीरे से गाएंगे। जी हाँ, मैं इन छोटे बच्चों से प्रेम करता हूँ, उनके विषय में कुछ तो है जो बहुत ही प्यारे हैं।
Prayer of dedication of this child's life for a life of service to you. ओ, मैं बस उन छोटे बच्चों से प्रेम करता हूँ, बस हर एक से, जो कि हर एक संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। वहाँ बस कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं छोटे जोसेफ को घर ले आया, जो कि सच कहूँ तो सबसे बदसूरत छोटा बच्चा था जिसे मैंने कभी देखा था, लेकिन उसकी माँ और मैंने सोचा कि वह एक गुड़िया है, लेकिन यह इसी तरह से होता है, आप जानते हैं, यही है, हम तो बस ऐसा ही सोचते हैं। मैं आज सुबह सोच रहा हूँ, हमारे कुछ सदस्य यहाँ पर हैं, वहाँ एक अब इस आँख में बेलाडोना दवा है जिससे सब बहुत धुंधला नजर आता है, लेकिन बहन नैश, भाई नैश के बारे में पूछा था, मैं सोचता हूँ कि क्या वो ठीक हैं, क्या वे यहाँ पर हैं? ओह तो ठीक है, हाँ वे यहाँ पर हैं। प्रभु की स्तुति हो भाई नैश, यह अच्छी बात है। अब बहन एडवर्ड्स, क्या वो यहाँ पर हैं? वो या बहन शेपर्ड जिनकी छोटी बीमार बच्ची थी, क्या वो अब ठीक हैं? अच्छी बात है, मुझे खबर मिली और बस 5 मिनट बाद ही मेरे पास बाहर से लोग इंटरव्यू के लिए आने वाले थे। मैं दौड़कर कमरे में गया और प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि बच्चे को पोलियो हो रहा है, हाथ और पैर अकड़ रहे हैं, और मैं प्रार्थना करने के लिए दौड़ा और कहा मैं कलीसिया के बाद आऊंगा। लॉयस से कहा कि वापस फोन करके और उस महिला को बताओ कि यदि वह मुझे बुलाना चाहती है मैं कलीसिया के बाद वहां पर आऊंगा। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए अंदर गया तो आत्मा ने कहा पोलियो नहीं है, वह ठीक हो जाएगी। मैं नीचे आया, खैर हम सब ने यहाँ कलीसिया में प्रार्थना की थी, बस इससे बात खत्म हो जाती है। जी हाँ महोदया, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना चीजों को बदल देती है। कहा गया वो आज सुबह यहाँ नहीं है, क्या वो दामाद हैं? जी हाँ, पिछले रविवार को, पिछली बार जब मैंने यहाँ प्रचार किया था, सप्ताह के रविवार को यहाँ एक युवा व्यक्ति बैठा हुआ था। मैं उसकी ओर देखता रहा, मैंने सोचा मुझे उस व्यक्ति के विषय में जानना चाहिए, और पता चला कि वह मेरे पुराने स्कूल के मित्र का बेटा था, जिम पूल, क्योंकि बचपन से हम एक साथ बड़े हुए थे। यही वो व्यक्ति है जिसके साथ उस समय मेरी बंदूक दुर्घटना हुई थी, और फिर बाद में मेरे एक और मित्र के साथ ऐसा ही हुआ था। मैं भरोसा करता हूँ कि मैं उस लड़के को मसीह की ओर अगुवाई कर सकता हूँ। मैंने उसके पिता के लिए बहुत कोशिश की, मुझे विश्वास है कि मैं अब भी ले आऊंगा, मैं उसे अंदर ले आऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं उस युवा व्यक्ति की अगुवाई कर सकता हूँ। उसके पास एक, मैंने उसकी ओर देखा है, वो ऐसा लग रहा था मानो उसमें एक अच्छा, मैं इसे अभी क्या कहूँ, यह टिप्पणी किसी और के लिए ना करें, लेकिन उसकी आत्मा का कंपन एक अच्छा एहसास था। मैं विश्वास करता हूँ कि उस लड़के को मसीह की ओर अगुवाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो आइए उसके लिए प्रार्थना करें। यह सही है। और भाई देखो, कोई और भी बीमार था या कुछ तो, जिसके बारे में मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब कभी कभी जब आप एक विनती को भेजते हैं तो याद रखें, जैसे ही मुझे ये विनती मिलती है, मेरी पत्नी इसी इमारत में कहीं तो है, मैं सोचता हूँ, इसलिए वो जानती है, जैसे ही मुझे कोई विनती मिलती है, मैं सीधे अपने गुप्त कमरे में प्रार्थना के लिए चला जाता हूँ, और जब तक मैं कुछ महसूस नहीं करता तब तक मैं वहाँ बना रहता हूँ, मैं बस इसे छोड़ता नहीं। एक दिन जब सैम, डॉक्टर सैम ने मेरी आंख से उस चीज को निकाला, तो वह कोशिश कर रहा था और इससे उसे बहुत दुख हो रहा था। उसे मेरे चेहरे पर एक तौलिया रखना पड़ा था। कहा, मैं अपने मित्र का लहू नहीं देख सकता। कहा, और मैं उसमें पूरा भीग गया था, आप जानते हैं। उसने कहा, मैं बस इसे नहीं कर सकता और इस पर काम नहीं कर सकता। देखा, और सो उसने उस चीज को बाहर निकाला और अगले दिन वो अस्पताल में था, इसलिए मैंने उसके लिए प्रार्थना की और वो ठीक होकर बाहर आ गया। और फिर दूसरे दिन उसकी पत्नी, वे यह भी नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या समस्या है, उन्होंने सोचा कि बहन को पोलियो हो गया है। देखा, कहा और उसके लिए प्रार्थना की और अब वो अच्छी तरह से घर आ गई है। सो हम कमरे में गए, डॉक हम ऑफिस में गए और वह हमने एक साथ दरवाजा खोला। कहा, अब भाई बिल, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, क्या आप मेरे और बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे? मैंने कहा, आओ हम प्रार्थना करें। तो वही वो एक है जिसे प्रभु ने दर्शन को दिखाया, चिकित्सालय को कहाँ बनाना है। आपको वो कहानी याद होगी। यदि आपको कभी भी इस पर संदेह हो तो जाकर और उससे कभी भी पूछ लेना। जी हाँ, बस किसी को भी आकर पूछने दो। कहा, मैंने ये बात 10,000 लोगों को बताई है। हाँ भाई, जी हाँ श्रीमान, देखा, उसका असल में नाम इजाक है, लेकिन वे उसे बिल कहते हैं। पवित्र आत्मा कभी कोई गलती नहीं करता है, यह अचूक है। अब यह कोई तो बात कह रहा था, कहा, मैं 53 वर्ष का हूँ और लगभग 31 वर्ष से मैं पुलपिट के पीछे रहा हूँ और मैंने उसे हजारों चीजों में देखा है। कल मैं वहाँ नीचे दक्षिणी केंटकी में था, ठीक टेनेसी की सीमा पर, और मैं भाई डॉल्टन के साथ एक नाव में बैठा हुआ था जिसके सभी बच्चों को प्रभु ने उसे प्रदान किया था। आपको वो सुबह याद है जब उसने निकलना आरंभ किया और उसने कहा, भाई ब्रैनम, कहा, मैं समझता हूँ आपके लिए इसका अनुमान लगाना कठिन होगा। मैंने कहा, ओ भाई डॉल्टन, 10,000 गुना 10,000 इस तरह की चीजें हैं। कहा, आप इस पर एक किताब को लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने कहा, इसके विषय में? मैंने कहा, ओ प्रभु, भाई डॉल्टन, यहाँ पर यह पूरी नाव भर जाएगी, एक पूरा विश्वकोश, इससे तो बस किताबों का ढेर लग जाएगा जो मैंने प्रभु को करते हुए देखा है। और वह एक बार भी असफल नहीं हुआ है। देखिए, एक बार भी नहीं, लेकिन हर बार सिद्ध होता है। मैं देखता हूँ, मैं अब विश्वास करता हूँ, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो वो भाई शेपर्ड की बेटी है जिसने एक प्रकार की संतरे रंग की पोशाक पहन रखी है। मैं ये सोचता हूँ, मैं उस सुबह उसके पास रुका हुआ था, वो नीचे की ओर चलकर जा रही थी और मैंने सोचा कि मैं हो सकता है गलत लड़की को गाड़ी पर बैठा दूंगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो बहन, वो मैं ही था जो रुक गया था। मैंने सोचा यह भाई शेपर्ड की बेटी थी और मैं उसे गाड़ी में ले लूंगा, क्योंकि मैंने सोचा हो सकता है उसकी कार खराब हो गई होगी या कुछ और हुआ होगा। हम बेकी को लेने के लिए जा रहे थे और मैंने सोचा शायद यह गलत लड़की हो, लेकिन अब मैंने उसे वहाँ उनके साथ बैठे हुए देखा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह सही लड़की थी। तो वह मैं ही था जो वहाँ आपके पास तक आया और फिर दूर चला गया। तो हर कोई प्रभु यीशु से प्रेम करता है? ओह अद्भुत, यह तो बहुत अच्छी और बढ़िया बात है, आमीन। तो ठीक है भाई विलार्ड, हमें आपके आने से बहुत खुशी है और आप काफी अच्छे भी लग रहे हो, जितना मैं देख सकता हूँ। हम दोनों का चेहरा एक प्रकार से कीमे के बर्गर जैसा हो गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर मुट्ठी भर कीमे का बर्गर मार दिया गया हो। और मैंने उस रात भाई विलाड को देखा जब वे सो रहे थे, और ईमानदारी से कहूँ तो वे खराब लग रहे थे, लेकिन आज सुबह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं भाई, आमीन। जी हाँ, आप जानते हैं शैतान हमें तब तक नहीं मार सकता जब तक परमेश्वर ना कहे आ जाओ, तब हम जाना चाहेंगे। क्या हम नहीं जाना चाहेंगे भाई विलाड? ये सही है, तब तक वो व्यर्थ में कोशिश कर रहा है। ऐसा ही है, प्रभु यीशु हमारा सहायक और हमारा शरण स्थान है। अब यहाँ मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जबकि आज सुबह मेरे पास प्रचार करने के लिए लगभग 6 घंटे हैं, समझे। बस अब हमने किसी को सूचना नहीं दी, न ही कोई पत्र भेजा या कुछ भी, क्योंकि मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन बस भाई नेविल की सहायता करने के लिए और आप सबसे दोबारा मिलने के लिए और थोड़ी संगति करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और पिछले रविवार की रात भाई रॉय रॉबर्टसन थे, मैं नहीं जानता कि वो यहाँ पर हैं या नहीं, मैं इतना साफ नहीं देख पा रहा हूँ कि पता चले कि वो यहाँ हैं। उसने मुझे फोन किया था, मुझे संदेश के विषय में बता रहा था, और किसी ने फोन किया, कहा मैं सोच रहा था कि जब आपने इस विषय में प्रचार किया कि परमेश्वर ने हमें सारी चीजों को दिया है, देखा उसने हमें दी है, उसने हमें जीवन दिया, इसे खरीदने की कोशिश करें, उसने हमें प्रेम दिया, इसे खरीदने की कोशिश करें, उसने हमें आनंद दिया, इसे खरीदने की कोशिश करें, उसने हमें शांति दी, इसे खरीदने की कोशिश करें, इसे खरीदने का कोई तरीका नहीं है, आप इसे नहीं खरीद सकते हैं। तब मैंने कहा उसने हमें मृत्यु दी। किसी ने फोन किया, कहा प्रचारक मैं सोचता हूँ कि आप इस बात के साथ कहाँ जा रहे थे। उसने कहा मैंने सोचा ओह यहाँ भाई ब्रैनम ने उस समय खुद को फंसा दिया, पर ऐसा नहीं है जबकि बाइबल ऐसा कहती है, समझे। बाइबल ने कहा उसने हमें मृत्यु दी। अब हम मृत्यु के साथ क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं पौलुस ने मृत्यु के निकट आते हुए कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? मृत्यु हमें नियंत्रित नहीं करती है, हम इसे नियंत्रित करते हैं। सही है, सारी चीजें हमें दी गई हैं। और उसके बाद मैंने उदाहरण दिया कि कैसे वो इज़राइल प्रतिज्ञा की देश की ओर आगे बढ़ रहा था। उन्होंने उस देश को कभी नहीं देखा था, वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनके पास केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। वहाँ पर एक देश था और यह दूध और शहद से भरा हुआ था और अच्छा था, और एक बड़ा स्थान था, और यह उन्होंने इसे कभी भी नहीं देखा था। कोई भी वहाँ कभी नहीं गया था, वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन उनके पास इसकी प्रतिज्ञा थी, और विश्वास के द्वारा वे रेगिस्तान में डेरा डालकर रहे। और जब वे ठीक सीमा रेखा तक पहुँच गए, उनके साथ यहोशू नाम का एक योद्धा था जिसका अर्थ होता है यहोवा उद्धारकर्ता। इसलिए उसने यर्दन को पार किया, प्रतिज्ञा के देश में गया और प्रमाण को वापस लाया कि वो देश वहाँ पर है। मैं यह पसंद करता हूँ, और यह एक अच्छा देश था। दो लोग अंगूरों का एक गुच्छा लेकर आए, यह एक अच्छा देश था। इसलिए उसने प्रमाण को वापस लाया कि जिस देश पर वे अधिकार करने जा रहे थे वो वहाँ पर था। अब कलीसिया के लिए हम अमरता के देश की ओर यात्रा कर रहे हैं, एक ऐसा देश जहाँ कोई मृत्यु नहीं है, एक ऐसा देश जहाँ मरे हुओं को जिलाया जाता है। और हमारे पास छावनी में एक महान उद्धार करता था। यीशु का अर्थ होता है यहोवा उद्धार करता, जो प्रिय है, और वो मृत्यु की यर्दन नदी को पार करके वहाँ उस ओर दूसरे देश में चला गया और वापस आकर और प्रमाण को लाया कि हम मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं, आमीन। तो मृत्यु कहाँ पर है? और फिर उसने हमें सारी चीजों को दिया। अब हमारे पास हमारी विरासत का बयाना है इतना अधिक। अब ध्यान से सुने, और मैं उस विषय पर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक अभी यह मुझे अच्छा लग रहा है, समझे। यह हमारे पास इसका बयाना है, क्योंकि एक दिन हम पाप में चले और उसके नाम में बपतिस्मा लेने के बाद और उसके साथ पुनरुत्थान में जी उठे। हमें पाप में से बाहर लाया गया है, अब कभी भी हम फिर से वापस जाना नहीं चाहते हैं, समझे। हम पाप से जी उठे हैं, प्रमाण के साथ जो हमारे पास है, हम संभावित रूप से सभी मृत्यु से पुनरुत्थान में हैं, समझे। यदि हम उसमें विश्वास करने के द्वारा पाप से ऊपर उठ सकते हैं, और वहाँ पाप है, कौन फिर से पाप के उस कूड़ेदान में वापस जाना चाहेगा? देखा, हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, समझे। और यही वो बयाना है, आमीन। यही वो संपूर्ण पुनरुत्थान का बयाना है, सारी मृत्यु शारीरिक और आत्मिक, हमने आत्मिक मृत्यु पर जय पाई है क्योंकि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और जब एलिया एक दिन यर्दन के पास गया और इस पर मारा एलिशा के साथ और नदी दो भाग हो गई और वह पार हो गया, वह दुगने भाग के साथ वापस आया। और जब हम मसीह के साथ यर्दन को मारते हैं तो हमारे पास एक भाग होता है, लेकिन जब हम वापस लौटते हैं तो हम दुगने भाग के साथ आते हैं। अब हमें पवित्र आत्मा के साथ धार्मिकता में पाप से पुनरुत्थान अनंत जीवन मिला है, और फिर मसीह के साथ वापसी पर हम दोनों भौतिक पुनरुत्थान के साथ वापस आते हैं, और हमारे पास पहले से ही आत्मिक पुनरुत्थान है। हमारे पास इसका दुगना भाग है। ये हमेशा ही मसीह और कलीसिया का एक नमूना रहा है, एलिशा और एलिया। ओह, मैं इस बात पर आरंभ नहीं करना चाहता। ओह प्रभु परमेश्वर, हम यहाँ 6 घंटे के इस संदेश में कभी नहीं ले पाएंगे। जी हाँ प्रभु, हड्डी पर मांस, भाई नेविल अब भी इसे चबा रहे हैं। ओह क्या आप खुश नहीं हैं? देखा, हमारे पास नहीं, वहाँ अब कोई और परेशानी नहीं है, मृत्यु कुछ भी नहीं है, हमने इसे पा लिया है, यह हमारी है, यह मुझे नियंत्रित नहीं कर सकती, मैं इसे नियंत्रित करता हूँ। कैसे? उसी के द्वारा जिसने मुझे जयवंत बनाया, इसलिए मैं पहले ही मृत्यु पर जय पा चुका हूँ। मैंने यह कैसे किया? उस पर विश्वास करने के द्वारा। समझे, मृत्यु पाप में है, अविश्वास में है। मैं एक अविश्वासी नहीं हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, मैं उस चीज से ऊपर उठ चुका हूँ, पुनरुत्थित हुआ हूँ। यह मेरे पूरी तरह सारे शारीरिक आत्मिक पुनरुत्थान का और हर एक चीज का बयाना है। जी हाँ श्रीमान, आपने इसे समझ लिया, इसलिए यीशु मसीह के जरिए से मृत्यु हमारे नियंत्रण में है, जिसने मृत्यु, अधोलोक, कब्र, बीमारी, दुख, बाकी की हर एक चीज पर जय पा लिया है, सभी पर विजयी हुआ है। और अब हम उसके साथ जी उठे हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ, मसीह यीशु में सारी चीजों के साथ ये हमारे पैरों के नीचे है, यहाँ तक कि शारीरिक पुनरुत्थान भी हमारे पैरों के नीचे है, क्योंकि हम मसीह में हैं। क्या आपने इसे समझ लिया? यदि आपने समझ लिया तो अपने हाथ ऊपर उठाएं। आमीन, यह अच्छा है। जब तक आप इसे समझ रहे हैं, यह अच्छी बात है। देखा, ऐसा न होने दें। अब बस इसे अपने मन में बनाए रखें। देखा, हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, शारीरिक, आत्मिक, हर तरह से, और हर एक चीज और सारी चीजें अब हमारी हैं। क्यों? यहाँ पर संसार कह रहा है कि हम पागल हैं, और तो भी पूरी धरती हमारी है, आप इसके उत्तराधिकारी कैसे बनेंगे? जबकि जैसा मैंने कहा, अब्राहम, देखो वो प्रतिज्ञा किए गए देश में था, परमेश्वर ने उसे यह देश दिया। लूत को किसी सिरफिरे डाकू ने पकड़ा था, उसे उठाकर ले गए, वह उसका भतीजा था। तो ठीक है, उस देश में हर एक चीज अब्राहम की थी, तो वह एक योद्धा नहीं था, उसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा, उसके पास कोई योद्धा नहीं थे, उसके पास कुछ सेवक लोग थे। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ तो शैतान ने आकर और उससे कुछ तो लूट लिया जो उसके लिए एक प्रतिज्ञा थी, उसने अपने सेवकों को हथियार दिए और खुद भी हथियार को उठा लिया। वो नहीं जानता था कि वो राजाओं के इस सारे समूह पर कैसे विजय को प्राप्त करेगा, बस कुछ मुट्ठी भर सेवक लोग ही थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे बताया कि इसे कैसे करना है। उसने अपने आप को विभाजित कर लिया और राजाओं को घात किया और विजयी होकर वापस आया। क्यों? उसने अपना विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर रखा कि उस देश की हर एक चीज उसकी है, और लूत उसका भागीदार था। ये सही बात है, जो उस देश का भागीदार था। ओह प्रभु, और वहाँ युद्ध समाप्त होने के बाद उसकी भेंट मलकीसिदक से हुई। क्या आप अब अब्राहम को मार्ग पर आते हुए देख सकते हैं? वो नहीं जानता था कि वो एक योद्धा था, लेकिन उसने तब जान लिया कि वो योद्धा है। जी हाँ श्रीमान, उसने उस एक से भेंट की जिसने प्रतिज्ञा की थी, मलकीसिदक। अब आइए आमोस की किताब में से पढ़ें। मैं आज सुबह बोलने जा रहा हूँ, हालांकि ना ही 6 घंटे, मैं आशा करता हूँ नहीं, समझे, एक विषय पर जो है एक सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग। और आज रात प्रभु ने चाहा तो मैं इस पर बोलने जा रहा हूँ, दबाव मुक्त होना, और सो प्रभु ने चाहा तो। अब मैं एक आलोचक के रूप में जाना जाता हूँ, लेकिन मैं आलोचना करने वाला नहीं हूँ, केवल उसी की करता हूँ जो गलत है लेकिन मुझे हमें गलत की आलोचना करनी चाहिए। अब यदि आप अपने रिकॉर्डर को चालू करने जा रहे हैं कमरे में, क्यों तो ठीक है। मैं अब आमोस का तीसरा अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, या हाँ आमोस का तीसरा अध्याय, बस इसका कुछ भाग, आमोस 3। हे इज़राइल की संतान, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विरोध में बोला है, उस सारे परिवार के विरोध में कहा है जिसे मैं मिस्र देश में से निकाल लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही को जाना है, इस कारण मैं तुम्हारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे? क्या एक सिंह बिना अहेर पाए वन में गर्जेगा? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मान में से गर्जेगा? क्या कोई चिड़िया धरती पर जाल में फंस सकती है जहाँ उसके लिए कोई फंदा नहीं है? क्या कोई धरती पर से फंदा उठाएगा और कुछ भी न पकड़ा गया हो? क्या किसी नगर में तुरही फूकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना भेद बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा।
Who will not fear? The Lord God has spoken. Who can but prophesy?
सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला है, कौन भविष्यवाणी न करेगा?
His eyes must have got narrow. As he stood,
उसकी आंखें अवश्य ही सिकुड़ गई होंगी जब वो उस सुबह सामरिया नगर के उस पार पहाड़ी पर खड़ा हुआ था।
I can see his steady hands as it moved through his gray beard.
मैं उसके संतुलित हाथों को देख सकता हूँ जब ये उसकी सफेद दाढ़ी पर घुमा रहा था, गरम तेज धूप चमक रही थी।
He wasn't too glamorous to look at.
वो ज्यादा आकर्षक नहीं था कि उसकी ओर देखते आज के आधुनिक प्रचारकों से कितना भिन्न है।
His clothes was rugged.
उसके कपड़े फटे पुराने थे, बिखरी सी दिखने वाली दाढ़ी, और उसने सामरिया के उस नगर की ओर देखा। जब उसने देखा उसकी आंखें सिकुड़ गई थी। वो इतना अच्छा नहीं था कि उसकी ओर देखते, लेकिन उसके पास उस राष्ट्र के लिए यहोवा यो कहता है वाला वचन था। यह हो सकता है इस आने वाले अभियान के लिए बहुत ही भिन्न बात थी जिसके लिए प्रभु ने उसे सामरिया में भेजा था। हमारे आधुनिक प्रचारकों की तुलना में भिन्न बात थी, वो इस तरह की बेदारी के लिए सुसज्जित नहीं था जैसा कि हम सोचते हैं कि उसे आज होना चाहिए। लेकिन याद रखें, वो एक आधुनिक सुसमाचारक नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता था। उसने आधुनिक उपकरणों के विषय में परवाह नहीं की। उसके पास यहोवा यो कहता है वाला वचन था। उसने परवाह नहीं की कि वो कैसा दिखता है और उसने किस तरह के फैशन के कपड़े पहने हैं, या उसने बालों में सही तरह से कंघी की है या नहीं, या कोई उसकी ओर देख रहा है या नहीं। उसके पास प्रभु का वचन था। यही उसका सारा अभिप्राय था, प्रभु के उस वचन को लाना। यह व्यक्ति कौन था? जी हाँ, यह आमोस था। वो भविष्यवक्ता, अटल व्यक्तित्व वाला, लेकिन वह जानता था कि वो कहाँ खड़ा था। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो वचन का सच्चा भविष्यवक्ता था, और वो इस नगर में इसलिए आया था क्योंकि उसके पास वचन आया था। और जब प्रभु का वचन एक सच्चे सेवक के पास आता है तो उसे अवश्य ही जाना चाहिए, परिस्थितियों की परवाह किए बिना या कठिनाइयों की परवाह किए बिना। उसे जाना ही है, जो कुछ भी हो, चाहे वो तैयार हो या नहीं, चाहे वो इस तरह से महसूस करे या नहीं, चाहे वो चाहता हो या नहीं, चाहे जो कुछ भी और हो, उसे जाना ही है। जो कुछ भी हो, यह परमेश्वर बोल रहा है और उसे अवश्य ही इस संदेश को लेकर जाना है, क्योंकि यह वो कभी भी मूर्खता पूर्व चीजों के पीछे नहीं जाता है, वो कभी भी पैसों के पीछे नहीं जाता है, वो कभी भी लोकप्रियता के पीछे नहीं जाता है, वो केवल प्रभु के नाम में जाता है। एक ही बात के लिए उसके पास एक मिशन होता है और वो प्रभु का भेजा हुआ होता है। और वो परमेश्वर का वचन होता है क्योंकि वो प्रभु के वचन को लेकर चल रहा होता है। यही प्रभु का एक सच्चा भविष्यवक्ता होता है। मेरा विषय है परमेश्वर के एक सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग।
दिस ग्रेट फियरलेस मैन ऑफ गॉड प्रोफेसाइड इन द डे।
परमेश्वर के इस महान निडर मनुष्य ने यारोबाम द्वितीय के दिनों में भविष्यवाणी की। मैंने उसके इतिहास का भाग लिखा हुआ यहाँ मेरे सामने रखा है। उसने अपने अभियान की लगभग 13 वर्ष भविष्यवाणी की। और जो यारोबाम था, यारोबाम द्वितीय बस लगभग उतना ही चतुर और एक योग्य मनुष्य था जितना कि कुछ समय के लिए इज़राइल था। वो एक मनुष्य था जिसने इज़राइल को फलने फूलने की स्थिति में लाया था। इज़राइल पूरी तरह फल फूल रहा था, लेकिन वो उस व्यक्ति के साथ कुछ तो गलत था। वो एक मूर्ति पूजक था। और उस दिन मैं एक प्रकार से इसे पढ़ रहा था, मैंने एक तरह से सोचा जो आज के लिए बहुत ही उपयुक्त बैठता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मनुष्य कितना चतुर है और वह कितना भी कुछ कर सकता हो और कितनी भी सफलता को रखता हो, यदि वह परमेश्वर से दूर हो जाता है तो वो राष्ट्र का ऋणी है। जो परमेश्वर और उसके वचन से दूर होता है, मैं सोचता हूँ कि क्या यह आज हमारे लिए उपयुक्त नहीं बैठता है, किसी के लिए जो टेलीविजन पर बैठना पसंद करते हैं और दिखाते हैं कि वे कितने चतुर हैं, उनके पास कितना दिमाग है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या उनके पास यहोवा यो कहता है को लेने के लिए पर्याप्त समझ है। वो एक चतुर मनुष्य था तो ठीक है। इज़राइल एक पिछड़ी हुई स्थिति में था। उसके प्रचारक, उसके याजक और उसकी सरकार भी सभी ने प्रभु का वचन छोड़ दिया था। अब उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वे प्रभु के वचन के साथ थे, लेकिन वहाँ एक मार्ग है जो मनुष्य को सही दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका अंत मृत्यु का मार्ग है। वे क्यों गलत थे? एक मनुष्य ऐसा क्यों विश्वास करेगा कि वो गलत है? लोगों का एक सारा याजक गण, हजारों प्रचारक, और वे याजक, और वे राजा, और वे राज्यपाल, वे सभी जो परमेश्वर की आराधना करने का दावा कर रहे थे, और फिर भी वे सभी गलत थे। तब उन्हें फलने फूलने के लिए किसी राजा की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें एक भविष्यवक्ता की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रभु का वचन या प्रभु के वचन का अनुवाद एक सच्चे भविष्यवक्ता के पास आता है। कभी कभी आप तब देख सकते हैं कि उसका मार्ग क्या होता है। यह एक बहुत ही कठिन मार्ग है, जब सभी याजक और सभी प्रचारक और सभी भविष्य का अनुमान लगाने वाले और स्वयं सरकार उसके विरोध में होते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन केवल भविष्यवक्ता के पास ही आता है। उसके पास सही वचन होता है। यद्यपि उसके पास वही बाइबल था जो उनके पास थी, लेकिन वचन उसी के लिए था।
परमेश्वर प्रमाणित कर रहा था कि उसके पास वचन था। उनके पास सबसे बड़ी बड़ी इमारतें थी और धार्मिक व्यवस्था और इत्यादि चीजें जो उन्होंने कभी बनाए थे। हर जगह वेदियां बनाई गई और हर प्रकार की चीजें, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर के वचन से लाखों लाख मील दूर थे। मैं अपने आप में सोचता हूँ, आज के लिए बिल्कुल सही तस्वीर बैठती है। जब मैं आमोस की इस किताब को पढ़ता हूँ, जब आप घर जाते हैं तो आपको इसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए। सारी सत्ता के लोग, सारे याजक, उन सभी ने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया था। मैं यहाँ वचन के दूसरे भाग को पढ़ना चाहता हूँ जो मेरे पास है, यह दिखाने के लिए कि उन्होंने इसे ऐसा कहाँ पर किया था। अब आइए दूसरा अध्याय और चौथा पद पढ़ें। बस एक मिनट। यहोवा यो कहता है, यहूदा के तीन क्या वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना है। यही वो वचन है, इसे तुच्छ जाना गया और फिर भी उन्होंने सोचा कि ये उनके पास है, और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उनके झूठ ने उन्हें भटका दिया। अब उनके पास वचन था, बाइबल, लेकिन वे झूठ जिसके साथ वे जुड़ गए थे, उन्होंने उन्हें भटका दिया था, उसके बाद जिस पर उनके पूर्वज चले थे। आपने कारण को देख लिया, अब वे भटक गए थे क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के अनुवाद को या अनुवादों को वचन में डाल दिया था। और मैंने सोचा कि यह आज के लिए सही बैठता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने विचारों को वचन में डालना चाहते हैं और फिर हम एक गड़बड़ी में चले जाते हैं। इस भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर की ओर से क्या ही फटकार थी। अब आमोस परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, एक सच्चा भविष्यवक्ता। कोई भी व्यक्ति जो कभी आमोस के बारे में पढ़ता है, वह परमेश्वर के उस निडर मनुष्य के साहस को जानता है। उसे छोटे भविष्यवक्ताओं में से एक माना जाता है, क्योंकि वो अधिक समय तक नहीं रहा, लेकिन उसने निश्चित रूप से पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाई थी। वो भविष्यवक्ताओं में सबसे निडर था और वह अभिषेक के साथ आया। वो यहोवा यो कहता है के साथ आया। वो जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उस पर था, ताकि वह परमेश्वर के वचन के सही अनुवाद को उनके लिए लेकर आए। आमोस उस देश से आया, उस जंगल से, उस तड़क भड़क के शहर में। वह पहले कभी भी वहाँ पर नहीं गया था। वो एक गांव का लड़का था जो दूर पीछे जंगल में रहता था। जब वो वहाँ पीछे प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उससे भेंट की थी और उसे इस तड़क भड़क वाले राष्ट्र की दुष्टता के बारे में बताया था, जिसमें का वो एक हिस्सा था। और सामरिया वो राजधानी थी, उस समय की राजधानियों में से एक, और यारोबाम के राज्य की। और जब वो उस सुबह वहाँ खड़ा था पहाड़ी की चोटी पर, अपने पुराने असभ्य देहात के कपड़े पहने हुए चल रहा था, हो सकता है उसके पैरों पर धूल और कीचड़ लगी हो, और जहाँ वो प्रत्येक रात को उस पुराने फटे पुराने कपड़ों में सोया था। और मैं नहीं जानता, उसके पास उन दिनों में नहाने का टप नहीं था। हो सकता है उसे नहाए हुए कुछ दिन हो गए होंगे, लेकिन ये बात मनुष्य के भीतर नुकसान नहीं पहुंचाती है। आजकल बाहर के सजने सवारने पर बहुत अधिक जोर है, भीतर के लिए इतना जोर नहीं है। हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि क्या हम हर दिन नहाते हैं या नहीं, और हमारे बालों को सवारा है या नहीं, और हमारे कपड़े बदले हैं या नहीं, और हर एक चीज। और फिर भीतर से किसी भी तरह से होने दो, वही पुराने पाप से भरे वस्त्र पहने हुए संप्रदायों और मत सिद्धांतों से प्राण को बदबूदार करते हैं, और ना ही कभी भी इसे जांचते हैं, और ना ही इसे संसार की चीजों से अलग करने के जल के वचन में धोते हैं। जब वो उस सुबह खड़ा हुआ था, पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था उस तड़क भड़क के शहर को, जो आधुनिक चीजों से भरा हुआ था, जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वहाँ ऐसी चीज है। इसराइल अपनी चरण सीमा पर था, यह अपने आसपास के सभी राष्ट्रों के साथ एक गठबंधन में था। बहुत ही आकर्षक, महिलाओं ने मौके के अनुरूप कपड़े पहने हुए थे और पुरुषों ने
और वे सुख विलास में डूबे हुए थे, दौड़ में दौड़ रहे थे और ओलंपिक और हर एक चीज चल रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी आंखें सिकुड़ गई थी, ना ही शहर के चकाचौंध से, जैसा कि कुछ पर्यटक लोगों की हो जाती है, न्यूयॉर्क के अंदर आते हुए या लॉस एंजलिस में आधे कपड़े पहने महिलाओं को देखकर पुरुष ऐसे ही करते हैं और पाप करते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे कुछ मित्र मछली पकड़ने के दौरे से वापस आ रहे थे। वे एक बड़े बाइबल कॉलेज के ठीक नीचे खड़े थे, जो प्रसिद्ध बाइबल कॉलेज था, और वहाँ सड़क पर घास के मैदान में युवा लड़कियाँ आधे कपड़े पहने हुई थी और युवा लड़के थे, शायद वे कॉलेज के छात्र थे, शराब पी रहे थे और भयानक उत्पाद मचा रहे थे। अब इस तरह की हरकतें बहुत से अमेरिकी लोगों की लालसा को भड़काती है, जो अपने आप को मसीही कहते हैं। जब वे वहाँ नीचे लॉस एंजलिस की ओर देखते हैं, या मैंने उन्हें हवाई जहाज में देखा जब हम लॉस एंजलिस में उतर रहे थे, वे इससे पहले कभी भी वहाँ नहीं आए थे, या हॉलीवुड में या फ्लोरिडा में, जहाँ उनके ताड़ के सारे पेड़ों पर चमकीली रंग बिरंगी पट्टीदार लाइटें लगी होती हैं। ओह, वे अपनी नाक को पाउडर लगाकर नया बनाती हैं और श्रृंगार करके तैयार होती हैं। उन्होंने सोचा कि यह अब तक की सबसे तड़क भड़क वाली चीज है जो उन्होंने कभी देखी है, और देखते हैं अच्छी तरह से सज धज कर और तैयार होकर सड़कों पर चलती हैं। वे वहाँ से बाहर जाकर और देखना चाहते थे कि वे कैसे उनके इतने तंग कपड़े पहनती हैं या सड़कों पर ऊपर नीचे मटकती हैं, जबकि उन्हें लगता है कि यह कुछ तो बहुत ही अनोखी चीज है। लेकिन उस भविष्यता की परमेश्वर से अभिषिक्त आँखें तड़क भड़क के कारण नहीं सिकुड़ी, जैसे किसी पर्यटक की सिकुड़ जाती है, लेकिन नैतिक भ्रष्टता पर उन लोगों के प्रति जो परमेश्वर से आशीषित होने के लिए बुलाए गए थे। उसकी आंखों ने उस तड़क भड़क की ओर नहीं देखा, वे तड़क भड़क के कारण नहीं सिकुड़ी, यह उन लोगों की उस अश्लीलता और भ्रष्टता के कारण था जिन्हें परमेश्वर का चुना हुआ होने के लिए बुलाया गया था, और वे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। सोचता हूँ, उसने कहा, सिंह गरजता है, कौन न डरेगा, परमेश्वर बोला, और कौन भविष्यवाणी करने से रुक सकता है। वो भ्रष्टता को, सड़न को देखता है, यही है जिसकी ओर वो देख रहा था, यही है जब उसने ये सब देखा, इसने उसे आकर्षित नहीं किया, इसने उसके प्राण को बीमार कर दिया। क्यों? वो एक भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने किस आशीष को देने की प्रतिज्ञा की थी, और वो आशीष क्या थी, और लोग आशीष के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और शैतान ने अपने समय में उस बात को, जो वास्तव में एक आशीष थी, बिगाड़कर एक नैतिक सड़न बना दिया। एक ऐसी आशीष जो अपरिवर्तित लोगों की आंखों और अभिलाषाओं को लुभाए, न कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के जीवन के मार्ग की ओर ले जाए। आज के लिए यह कितना प्रतीकात्मक है, कैसे प्रचारक पुलपिट पर खड़े होकर और इस संसार के पाप और भ्रष्टता को देख सकते हैं, और लोगों को उस प्रकार कार्य करते हुए और व्यवहार करते हुए देख सकते हैं जिस तरह से वे करते हैं, फिर भी बस उन्हें आशीष देते हैं क्योंकि वे उनकी कलीसिया या किसी संप्रदाय के एक सदस्य हैं। यह बात मेरे प्राण की समझ से परे है। जब परमेश्वर बोलता है, भविष्यवाणी करता है, यदि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के एक सच्चे भविष्यवक्ता पर उतरता है, तो वह वचन के साथ पुकार उठेगा। मैं आलोचनात्मक नहीं होना चाहता, लेकिन उन्हें कौन चुप करा सकता है, कौन ऐसी चीज को देखकर बर्दाश्त कर सकता है और मसीह का दास होने का दावा कर सकता है और उसके विरुद्ध आवाज न उठाए। मैं परवाह नहीं करता कि एक संप्रदाय क्या कहेगा या कोई कलीसिया क्या कहेगी, यही कारण है कि मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। पहली चीज, वे आपको बाहर निकाल देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन पहले आता है। यदि आप एक संदेश वाहक हैं, तो आपके पास कहने के लिए कुछ तो होता है। यदि आप इस वचन के विपरीत कुछ भी कहते हैं, तो आप परमेश्वर के एक संदेश वाहक नहीं हैं। आप किसी संप्रदाय
या किसी धर्म ज्ञान की वाचा के संदेश वाहक हैं, लेकिन परमेश्वर के एक संदेश वाहक के पास परमेश्वर का वचन होता है। और आज सुबह हमारा मित्र, जैसा कि हमने उसकी ओर देखा, उसके पास परमेश्वर का वचन था, क्योंकि वह प्रभु का एक सच्चा भविष्यवक्ता था। अब उन्होंने सोचा कि उनके पास इसका अनुवाद था और सोचा, ठीक है, निश्चय ही, देखो हम क्या कर रहे हैं। अब बात ऐसी है, हमने उसे आज सुबह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ पाया, नीचे शहर में से होते हुए देख रहा है, अपने सिर को हिलाते हुए वहाँ देख रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ रही थी, अपनी आस्तीन को ऊपर करते हुए और अपने चेहरे से पसीना और धूल पोंछ रहा था। उसके गंजे सिर पर तेज धूप पड़ रही थी, उसकी दाढ़ी नीचे लटक रही है, वह इसे अपने हाथों से रगड़ रहा है। उसने चमक धमक को नहीं देखा, उसने पाप को देखा। इसने उसे प्रसन्न नहीं किया, इसने उसे बीमार कर दिया। उसने क्यों नहीं कहा, मैं एक इजरायली हूँ, देखो मेरा देश कितना फल फूल चुका है। वो ऐसा कैसे कह सकता था, जबकि वो परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता था, परिणाम को जानते हुए और जानते हुए कि ऐसी चीज का क्या परिणाम होने जा रहा था। आइए आज उसे एक पहाड़ी पर खड़ा करें और वहाँ उसे नीचे की ओर देखने दें, उसे जेफरसन विले की ओर देखने दें, उन लोगों की ओर जो खुद को मसीही कहते हैं, उसे अमेरिका में कहीं भी ऐसे लोगों की ओर देखने दें जो खुद को मसीही कहते हैं। उसकी परमेश्वर से अभिषिक्त आँखें फिर से सिकुड़ जाएंगी। उसके हाथ उसकी दाढ़ी को मरोड़ रहे थे, क्यों? वो उस चमक धमक और फलने फूलने को नहीं देखता है जिसे संसार देखता है, वो परमेश्वर से उन्हें दूर जाते हुए देखता है। वह लोगों के नैतिक सड़न को देखता है, वो राष्ट्र को पीछे हटते हुए देखता है, वो कलीसिया में सड़न को देखता है। वो उसकी आंखों को सिकुड़ने और इसके अंदर जाने की इच्छा करने के सिवाय और क्या कर सकता था, जिससे कि वो इसे पूरी तरह टुकड़े टुकड़े कर सके। क्या होता यदि वहाँ पर कोई बिशप उससे मिलता और कहता, अब क्या तुम प्रभु के भविष्यवक्ता हो, अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कह सकते हो और तुम क्या नहीं कह सकते। आप सोचते हो कि वह उनकी सुनेगा? क्या हो यदि वे कहते, आकर अब हमारे संगठन में जुड़ जाओ और हम तुम्हारे अभियान में तुम्हारी सहायता करेंगे? आप सोचते हैं कि वह सुन लेता? नहीं, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता इस प्रकार के मनुष्य से। नहीं, वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, उसे उनसे सहयोग लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का ठहराया हुआ समय। वो यहोवा यो कहता है मैं आ रहा था, यही सच्चा भविष्यवक्ता होता है। वो इसी तरह से आगे बढ़ता है, वो यहोवा यो कहता है को छोड़ और किसी के साथ आगे नहीं बढ़ता है। क्या सामरिया का यह आकर्षक करने वाला शहर, यह स्वघोषित उच्च शिक्षित इज़राइल, ये अच्छे चमकाए हुए प्रचारक और याजक इस छोटे से इस अज्ञात व्यक्ति को स्वीकार करेंगे? शायद उसका व्याकरण बहुत ही खराब था, जंगल में एक निर्धन परिवार से आया था, घर को छोड़ दिया, परमेश्वर द्वारा बुलाया गया, जंगल में चला गया कि परमेश्वर और उसके वचन का अध्ययन करे, और एक भविष्यवक्ता बन गया। प्रभु ने उसे इसी तरह जन्म दिया। भविष्यवक्ता जन्म लेते हैं, युग के लिए एक संदेश वाहक होते हैं, जिसे परमेश्वर पूर्व ज्ञान के द्वारा उस युग को जानता है, और पाप के विरुद्ध बोलने के लिए वहाँ उसके पास उसका प्रतिनिधि होता है। क्या वो चमक धमक वाला शहर उसे ग्रहण कर सकता है? क्या आप सोचते हैं कि उन स्त्रियों ने उसकी ओर ध्यान दिया होगा जो उसने कहा? आप सोचते हैं कि उन याजकों ने उसकी बात सुनी होगी? क्यों नहीं श्रीमान, उसके पास उसके साथ किसी भी संस्था से कोई सिफारिश नहीं थी। वो ऐसा नहीं कह सकता था कि फरीसियों ने मुझे भेजा है, ना ही वो कह सकता था कि सदुकियों ने उसे भेजा है। उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था, उसके पास लोगों के किसी भी झुंड से कोई संगति का कार्ड नहीं था, उसके पास अपने अभियान को तैयार करने के लिए कोई अग्रदूत नहीं था। ऐसा नहीं हुआ था कि सारे फरीसियों ने कोई संयुक्त सभा की हो और एक सेवकों की नाश्ते की बैठक रखी हो और हर एक चीज को एकत्र करें जिससे कि उसके अभियान को आगे बढ़ाएं और जानते हुए कि वो आ रहा है वह उनके लिए अज्ञात था। उसके पास कोई संगति कार्ड नहीं था, उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था, उसके पास लोगों से कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन उसके पास यहोवा यो कहता है वाला वचन था। सच्चे भविष्यवक्ता का यही मार्ग होता है। उसके पास यहोवा यो कहता है वाला वचन था। यदि उसके पास यहोवा यो कहता है था तो यह हमारी मनुष्य की बनाई हुई योजनाओं से बहुत ही भिन्न है। उसे बस यही चाहिए था। यदि वो इस मार्ग से आता है तो वो एक कलीसिया के नाम में आया है, यदि वो इस मार्ग से आता है तो वह प्रभु के नाम में आता है। इसलिए एक सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा ही प्रभु के नाम के मार्ग से ही आता है, वो हमेशा ही प्रभु के नाम में आता है। अब वो संगति के कार्ड को नहीं दिखा सकता था, लेकिन उसके पास परमेश्वर का वचन था और यही है जो परमेश्वर ने लोगों के लिए भेजा है। अब लोगों ने अपने खुद के लिए संगठन बना लिया था, उनके पास अलग अलग सांप्रदायिक समूह थे और यही है जो लोगों ने बनाया था। लेकिन आमोस के पास यह नहीं था, उसके पास बस यहोवा यो कहता है वाला वचन था, उसके पास यही सब था। मैं उन याजकों की कल्पना करता हूँ, एक सुबह को सबत की सुबह को छोटी सी प्रार्थना करते हैं और इत्यादि एक छोटी सी समर्पण की सभाएं करके और वापस जाते हैं और महान मूसा के विषय में कुछ बोलते हैं जो एक समय यहाँ पर रहा था और कोई तो एक और महान व्यक्ति जो किसी समय पर रहा था। लेकिन ओह, अब वो दिन बीत चुके हैं। आप लोग हमारे नए राष्ट्रपति को जानते हैं, हमारी नई सरकार को और जो कुछ भी हमें मिला है, और इस तरह की कुछ बातें करके और घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति आता है जो इसकी परवाह नहीं करता है, वो यहोवा यो कहता है के साथ आता है। देखा, भविष्यवक्ता का यही मार्ग होता है, कोई सहयोग नहीं। वो जानता था कि उसे आगे क्या सामना करना है, वो जानता था कि हर एक चीज उसके विरोध में होगी, जानता था कि वे उसे अस्वीकार कर देंगे, वे उसे ठुकरा देंगे, लेकिन वो प्रभु के नाम में आ रहा था। यीशु जानता था कि कलवरी उसके सामने है, लेकिन वह प्रभु के नाम में आया। देखा, सच्चे भविष्यवक्ता का यही मार्ग होता है। उसके पास राष्ट्र के लिए प्रभु का वचन था, लेकिन प्रभु का सच्चा वचन उन लोगों के लिए अनजानी बात थी। फिर भी उन्होंने सोचा कि उनके पास वचन है। मुझे आशा है कि यह बात गहराई तक पहुंचेगी। वे अपने आप को इतना पवित्र और धार्मिक समझ रहे थे कि परमेश्वर का वास्तविक वचन उनके लिए एक अनजानी बात बन गया था। आज भी इसी तरह से है। परमेश्वर का सच्चा वचन जो प्रकट बना, ये बहुत से पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए एक अनजानी बात है। वचन का सच्चा अनुवाद, वास्तविक विपत्तियाँ और वे शाप, परमेश्वर की सच्ची आशीषें, बहुत से लोगों के लिए एक अनजानी बात है जो खुद को पवित्र कहते हैं, कलीसिया के सदस्य, मसीही। यह उनके लिए एक अनजानी बात है, वे इसे नहीं जानते। आप उन्हें उसके विषय में उल्लेख करें, उन्होंने ऐसी बात कभी भी नहीं सुनी, और फिर भी उनके संगठन बढ़ रहे हैं और फल फूल रहे हैं, तथा हर समय उनके सदस्यों की संख्या बढ़ती और बढ़ती जा रही है, और हर वर्ष और अधिक संगठन जुड़ते जाते हैं। उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी उनके पास आता है वो उन सांप्रदायिक समूहों में से ही आता है, निश्चय ही वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे, ना ही आज वे ऐसा करेंगे। वे लंबे समय से भूल गए थे कि परमेश्वर इन पत्थरों से परमेश्वर के लिए सच्चे भविष्यवक्ता को खड़ा करने में सक्षम है। परमेश्वर पिछड़े जंगलों के लोगों में से भी खड़ा करने में सक्षम है, वह इन पत्थरों को खड़ा करने में सक्षम है। वे मनुष्य जो उसके वचन के लिए खड़े होंगे और उसके नाम में अर्थात सच्चाई में भविष्यवाणी करेंगे। कुल्हाड़ी को पेड़ की जड़ पर रखते हुए लकड़ी के टुकड़ों को गिरने दो, मैं इसकी परवाह नहीं करता कि उसे सहयोग मिला है या नहीं, लेकिन सच्चे भविष्यवक्ता का यही मार्ग होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो इसे आसानी से कर लेगा, वे नहीं जानते कि वे क्या बोल रहे हैं। उसे शहर में किसी शानदार घोड़े की बग्घी में नहीं लाया गया था जिसमें सुंदर सजे धजे घोड़े लगे हों, झूमर लटक रहे हों,
और महायाजक वहाँ बाहर खड़े हों, जिनके सिर पर बड़े बड़े मुकुट जैसी चीजें लगी हों, और वे उसके आगे झुक रहे हों, आदरणीय डॉक्टर फलाना और फलाना आ रहे हैं, यह कोई संगठनात्मक व्यवस्था रही होती। जैसे उन सभी का राजा आया, वो आया जैसे एक खलियान में अस्तबल में से होते हुए आया, अर्थात गाय का खलियान। वो कभी भी धूमधाम और शोभा में नहीं आया, लेकिन वह एक छोटे बालक की नम्रता में आया, जो एक खलियान में जन्मा था। आमोस नहीं आया, प्रभु का वचन, क्योंकि वह प्रभु का वचन था, परमेश्वर का कोई भी वचन। यह वो व्यक्ति नहीं है, यह परमेश्वर है। यीशु ने कहा, यह मैं नहीं हूँ जो कामों को करता हूँ। उन्होंने कहा, तुम एक मनुष्य हो, अपने आप को परमेश्वर बना रहे हो। उसने कहा, तब यदि मैं परमेश्वर के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास मत करो। लेकिन यदि काम अपने आप में बोलते हैं और तुम मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते, तो कामों का विश्वास करो। आमोस परमेश्वर का वचन था जो रास्ते पर चल रहा था। वो साधारण ढंग से चलकर वहाँ आया, संसार के फैशन या तौर तरीकों में नहीं आया, वो आत्मा की सामर्थ के साथ में आया। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से आता है, ना ही संगठनात्मक मत सिद्धांत में, ना ही पुलपिट में कायरता की किसी चीज के साथ, लेकिन यह आत्मा की सामर्थ में आता है, ताकि परमेश्वर को राष्ट्र और लोगों पर प्रकट करे। यही एक भिन्नता है। कितनी भिन्नता है! अब यह बात तो बहुत पहले ही भुला दी गई थी कि परमेश्वर पत्थरों से भी सच्चे भविष्यवक्ताओं को खड़ा करने में सक्षम है। उनके पास नहीं, उनके संगठन को किसी सच्चे भविष्यवक्ता को खड़ा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शायद वो ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो यह एक संगठनात्मक भविष्यवक्ता होगा। लेकिन परमेश्वर उठाकर खड़ा करता है। परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही लेता है। वह अपने काम को करने के लिए अक्सर उसे लेता है जो कुछ भी नहीं है। ये बात दिखाती है कि यह परमेश्वर है। एक मनुष्य जो पूरी तरह से फूला हुआ है और सोचता है कि वह कुछ तो है, तब परमेश्वर उसका उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा है। आज मसीही कलीसिया के साथ यही समस्या है। वे सोचते हैं कि वे कुछ तो जानते हैं। बाइबल कहती है, जब एक मनुष्य सोचता है कि वह कुछ तो जानता है, तो वह कुछ भी नहीं जानता जो उसे जानना चाहिए। आज यही परेशानी है कि हमारे पास बहुत अधिक स्वार्थ, अधिक ढोंग, अधिक शिक्षा, बहुत अधिक धार्मिकता है, और परमेश्वर के वचन के उद्धार के विषय में कुछ भी नहीं जानते। यही इसका दयनीय भाग है। जी हाँ, वे भूल गए थे कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को खड़ा करने में सक्षम है, या वचन के सच्चे भविष्यवक्ता को खड़ा करने के लिए सक्षम था। उन्हें किसी विशेष विद्यालय से पढ़कर आने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर उन्हें उनकी शिक्षा को देता है। उन्हें कॉलेज की चार डिग्रियों को लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनकी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, और उनकी डॉक्टर की डिग्री और इत्यादि चीजों की। उनके पास यह होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जिस किसी को भी चाहता है उसे लेता है और उसमें अपना वचन डाल देता है। तो यह कैसे करता है? वो इसे प्रगटीकरण में लाता है और साबित करता है। वे यह नहीं बोल सकते थे कि यीशु किस धर्म विद्यालय में से आया है। वो किसी धर्म विद्यालय में नहीं था। वो किस विद्यालय से है? वो किसी विद्यालय में नहीं था। लेकिन उसके पास क्या था? उसके पास परमेश्वर था और वो वचन था। वे किसी विद्यालय की ओर संकेत नहीं कर सकते थे, और परमेश्वर ने कभी भी किसी मनुष्य को विद्यालय में से नहीं खड़ा किया। इतिहास में से होकर देखें और पता करें कि उसने ऐसा कहां पर किया है। वो ऐसा नहीं करता है। वो कहीं से तो किसी को तो लेता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, इसके लिए कोई आशा नहीं है। तब वो उसे अंदर लेकर आता है और उसमें अपने वचन को रखता है और स्वयं को प्रकट करता है। यही है जो वो यहाँ आमोस में कर रहा था। तो ठीक है, अब आमोस का वचन परमेश्वर के द्वारा उनके अपने दिनों में प्रमाणित हुआ था। परमेश्वर ने आमोस के वचन को प्रमाणित किया कि वही था, उसके पास प्रभु का वचन था। और यदि वह ठीक अभी हमारे पास आता है, क्या आप सोचते हैं कि हमारा राष्ट्र और हमारे लोग ऐसे एक मनुष्य को ग्रहण करेंगे? क्या आप सोचते हैं कि बैप्टिस्ट आमोस को स्वीकार करेंगे, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, कैथोलिक, नहीं श्रीमान, नहीं, निश्चय ही उसे नहीं करेंगे। आइए बस कुछ क्षण के लिए उसे उठाकर और उसे यहाँ पर लेकर आएं, बस कुछ मिनट, और पता करेंगे कि वे स्वीकार करेंगे या नहीं। आइए अब देखें कि क्या उसे आज हमारी कलीसियाएं उसे स्वीकार करेंगी या नहीं। पहली चीज जो वो करेगा, वो हर एक संगठन से असहमत होगा, क्योंकि यह वचन के विपरीत है। जी हाँ श्रीमान, वो हमारी सारी व्यवस्था को दोषी ठहराएगा। यह सही है, हर एक शिक्षा, हर एक संस्था, हर एक संप्रदाय, वह सारी चीजों को दोषी ठहराएगा। मैं बस कल्पना करता हूँ, मैं इनमें से कुछ पेंटिकॉस्टल अगुओं को यह कहते हुए देख सकता हूँ, क्यों परमेश्वर की महिमा हो यदि वह, क्यों हम हमारे शहर में उस मनुष्य को नहीं रहने देंगे। और आप क्या सोचते हैं कि प्रेस्बिटेरियन और बैप्टिस्ट क्या उसे रहने देंगे? क्यों, वो अज्ञानी, हम उसे अपने देश के आसपास भी नहीं चाहते। वो एक संकी के अलावा और कुछ नहीं है। यदि संभव हुआ तो वे उसे जेल में डालने के लिए एक कागज पर हस्ताक्षर करेंगे, उसे रास्ते पर से हटा देंगे। लेकिन आप सोचते हैं कि आप उसे जेल में रख सकते हैं? ओ नहीं, आप परमेश्वर के वचन को पिंजरे में नहीं रख सकते। नहीं नहीं, कुछ भी हो, यह बाहर आ ही जाएगा। एक रात को जेल की सलाखें खुल गई जब उन्होंने इसे जेल में बंद करने की कोशिश की। एक प्रकाश अंदर आया और उसे बाहर निकाला। नहीं, वो निश्चय ही हमारी व्यवस्था से असहमत होगा। तो ठीक है, वो क्या करने लगेगा? वो इसे उखाड़ फेंकेगा। क्यों? वो एक परमेश्वर का सेवक है। वो सीधे बुनियाद में चला जाएगा और अपना अभियान आरंभ करेगा, ठीक सीधे पीछे जाकर, और उसके हर एक मत सिद्धांत को उखाड़ फेंकेगा और वापस बुनियाद की ओर जाएगा। बुनियाद क्या है? परमेश्वर के वचन पर। सही है, आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन नहीं टलेंगे। इसलिए वो हर एक संप्रदाय, हर मत सिद्धांत, हर एक शिक्षा को उसमें से उखाड़ फेंकेगा और इसे एक ओर फेंक देगा। वो इसे अनंतता में ध्वस्त कर देगा। आप सोचते हैं कि पेंटिकॉस्टल उसे ग्रहण करेंगे? नहीं श्रीमान। बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन? नहीं श्रीमान। नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस, वे उससे घृणा करेंगे निश्चित रूप से। आप सोचते हैं कि वे बाहर जाकर और उससे एक आरामदायक कार में मिलेंगे और उसे शहर में लेकर आएंगे? वे तो प्रार्थना करते थे कि सूरज उसे वहीं पर झुलसा दे। वे तो उसके शहर में आने से रोकने के लिए एक अवरोध लगा देते। क्यों? शहर के हर कहीं और अधिक सेवक लोगों की बैठक होती। आपने अपने जीवन में इतनी बैठक कभी नहीं देखी होगी। उस संकी को इस शहर से बाहर ही रखो। लेकिन फिर भी उसके पास यहोवा यो कहता है वाला वचन था। समझे, यही एक सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग है। उसे तिरस्कृत किया जाएगा निश्चित रूप से। वह अपने अभियान के लिए सीधे बुनियाद में जाएगा। उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यह नहीं कहेगा, अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेथोडिस्ट लोग आकर और मेरी सहायता करें। मैं आप बैप्टिस्ट को चाहता हूँ, मैं यहाँ के आसपास के सभी लोगों को चाहता हूँ, आप सारे पेंटिकॉस्टल लोग, आप दावा करते हैं कि आप अंतिम झुंड हैं जिसे परमेश्वर बुलाने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे पास आएं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अभियान का सहयोग करें। आप कैसे बपतिस्मा लेते हैं? पवित्र आत्मा का आरंभिक प्रमाण क्या है? वे प्रश्न ये उसके सामने डाल दिए जाते और जब वो बाइबल की सच्चाई के साथ वापस आता तो वे उसे ठुकरा देते। लेकिन यही एक सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग होता है। उसे इन सभी का आमना सामना करना पड़ता है। समझे, निश्चित रूप से हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे। नहीं श्रीमान, हमारे, हम उसे बिल्कुल भी नहीं रखते। हमारे देश के आसपास उसका कोई भी अभियान नहीं होने देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम उसे नहीं चाहेंगे। नहीं श्रीमान। लेकिन वो आकर और कलीसिया को वचन की ओर वापस लाएगा, क्योंकि यही वो बुनियाद है। कोई भी किसी और बुनियाद पर रखेगा तो यह धस्ती हुई रेत है। केवल इसी बुनियाद पर परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाता है, प्रेरितों की शिक्षा पर। जैसा कि मैं उस दिन कह रहा था, कोई तो शुद्धिकरण के विषय में बोल रहा था और संत फ्रांसिस और संत सिसिलिया जैसे बहुत से लोगों का उल्लेख कर रहा था, और उसने कुछ लोगों के लिए प्रार्थना की और शुद्धिकरण से मुक्त हो गए, और इस तरह के अधिकारों को प्रमाण के रूप में दे रहा था। यह वचन अनुसार अधिकार नहीं है। ये वे लोग हैं जिनके पास कोई अधिकार नहीं है।
पीड़ितों के पास वचन के अनुसार अधिकार था, और यदि यह उन वचनों के विपरीत है तो जहाँ तक मेरी दृष्टि में यह एक झूठ है। मैं शुद्धिकरण में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यह ठीक अभी है। आप अपने ही प्राण को शुद्ध करते हैं। शुद्धिकरण का अर्थ होता है शुद्ध करना। जब आपको लगता है कि आपने कुछ तो गलत किया है, तो आगे बढ़ें और उसे अपने अंदर से साफ कर लें, अंगीकार करने और रोने और उपवास करने और प्रार्थना करने के द्वारा। यहाँ तक कि कोई तो मुझ पर हंसा। ज्यादा समय नहीं हुआ जब प्रभु ने यहाँ आकर और मुझे एक दर्शन दिया। मैं हमेशा ही उस सर्प को बांधने के विषय में देखना चाहता था। मैं हमेशा सोचता था कि कैसे बांधना है, मुझे इस तरह से आगे कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि यही है जिसे मैंने अपने सारे जीवन में चाहा है। तब मैं उपवास और प्रार्थना करने लगा। कहा, तुम ऐसा किस लिए कर रहे हो? मैंने कहा, वहाँ पर उसने मुझे बताया कि मैं इतना ईमानदार नहीं हूँ। उसके आने के बाद मैं अपने आप को तब शुद्ध करना चाहता था। अपनी मृत्यु तक प्रतीक्षा न करें और न किसी याजक को कोशिश करने दें कि आपको शुद्ध करे। आप अपने प्राणों को शुद्ध करें। लेकिन देखो, उन्होंने इसे आधिकारिक वचन में से निकाल कर और इसे किसी मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत के हाथों में दे दिया, जिससे कि कलीसिया में पैसा लाया जा सके, क्योंकि वे संसारिक चीजों की ओर देखते हैं, संसारिक कलीसिया की ओर, संसार में की बड़ी बड़ी शक्तियों को, राजनीतिक शक्तियों को। लेकिन परमेश्वर अपने वचन की ओर देखता है, और कोई भी शब्द जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है वो गलत है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरे लिए या तो वचन है नहीं तो कुछ भी नहीं। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ श्रीमान। वो सीधे बुनियाद में चला जाता, वह चीजों को उखाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता। उसे ऐसा करना ही है। यदि आज अमोस यहाँ पर होता तो वो कुछ भी और नहीं कर सकता था, वो और कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि याद रखें, वो परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता है। जिसके पास वचन आता है वो और कुछ भी नहीं कर सकता। वचन पर वापस जाने के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता यदि देश में सारे पेंटिकॉस्टल उसके चारों ओर इकट्ठा होकर कहते, श्रीमान अमोस, हम विश्वास करते हैं कि तुम एक भविष्यवक्ता हो, लेकिन तुम वचन से भटक गए हो। हम तुम्हें सही राह दिखाना चाहते हैं। वो वचन के साथ बना रहेगा, वो और कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता है। उसे उनके सहयोग की जरूरत नहीं थी। उसके पास देने के लिए एक संदेश है, और वे सब जो पिता ने मुझे दिए हैं वे मेरे पास आएंगे, और वो वचन का प्रचार करने जा रहा है, और वो इसका ठीक वैसे ही प्रचार करेगा जैसे यह बाइबल में है, और इसलिए हम उससे ठुकरा देते। यह सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या होगा। परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ताओं के पास आता है, उनके वचन का अनुवाद सही अनुवाद होता है। इज़राइल हमेशा ही पंक्ति से हट जाता था, और परमेश्वर ने उनके लिए एक भविष्यवक्ता को चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ भेजा ताकि उस वचन का अनुवाद करे। और उसने कैसे जाना? उसने कहा, यदि यह भविष्यवक्ता बोलता है और यह घटित होता है तो यह सही है। उसने अपने भविष्यवक्ताओं को सही प्रमाणित किया कि वे सही थे। यीशु ने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, इसे तुम जान जाओगे। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। और भला वे प्रभु के एक भविष्यवक्ता होने का दावा कैसे कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन का इनकार कर सकते हैं? कैसे एक मनुष्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले सकता है उन शीर्षक में, और उसी यीशु मसीह के नाम का इनकार कर सकते हैं, जबकि बाइबल में उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए कोई वचन नहीं है? मैं कठोर और आलोचनात्मक हो सकता हूँ, लेकिन यह उसी तरह से होने का समय है। यह सच है। कैसे लोग आज अपने आप को मसीही होने का दावा कर सकते हैं और हर एक चीज के लिए यहाँ बाहर भागते फिरते हैं, और स्त्रियाँ कटे बालों के साथ होती हैं और छोटे कपड़े पहने हुए और सिगरेट पी रही हैं और सिनेमा के तमाशे के लिए भागती हैं, किसी भी तरह का एक पुराना तमाशा और ऐसा करना जारी रखती हैं? मुझे बताओ कि यही पवित्र आत्मा है? आप मुझे ऐसा कभी मत कहना। आप परमेश्वर को घोर अप्रसन्न कर देते हो, यदि ऐसी कोई चीज हो सकती है। जी हाँ, मुझे पक्का है कि आप समझते हैं। अपने आप को इस तरह से कहकर बुलाते हैं, भला ऐसी चीज किस तरह से हो सकती है? वे उनके फलों के द्वारा जाने जाते हैं। वो फटकार लगाता और हर एक बाल कटी स्त्री को दोषी ठहराता। वो और कुछ कर भी कैसे सकता है? वो एक भविष्यवक्ता है, और यही वचन है। वो कहेगा, तुम इजाबेलो, वह उनके साथ कठोर व्यवहार करता। क्यों? वो एक भविष्यवक्ता है, उसे वचन के साथ बने रहना होगा। यह सही है। आप सोचते हैं कि वे रुक जाएंगे? नहीं श्रीमान, वे कहेंगे यह एक कट्टरपंथी है, वो उतना ही बुरा है जितना कि वो बाइबल में पुराने समय का पौलुस था, स्त्री से घृणा करने वाला। तुम पाखंडियों का झुंड जो नाम के कहलाने वाले मसीही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पवित्र जीने की कोशिश करो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक तुम परमेश्वर के वचन का इनकार करते हो और इसके साथ पंक्तिबद्ध नहीं होते हो, तुम एक पापी हो, एक अविश्वासी हो। यही है जो वो कहता, वो नहीं रखता। वह कुल्हाड़ी को सीधे पेड़ की जड़ पर रखता, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। वो एक भविष्यवक्ता है और यही एक सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग है। वे उस वचन के साथ बने रहते हैं, चाहे यह कोई भी हो। यदि यह उनके अपने माता या पिता हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु ने ऐसा किया, इतना तक उसे माँ भी कहकर नहीं बुलाया। वह थी ही नहीं, वह परमेश्वर था। परमेश्वर की कोई माँ नहीं होती है। वे कहेंगे, तो फिर उसका पिता कौन है? वो फटकार लगाएगा और उन्हें दोषी ठहराएगा। वह हर एक संप्रदाय को दोषी ठहराएगा, क्योंकि उनमें से कोई भी वचन पर बना हुआ नहीं है। मैं उनमें से एक को भी नहीं देख सकता हूँ। और जैसे ही वे संप्रदाय बन जाते हैं, वे ठीक तभी वचन के विरोध में होते हैं। तो कैसे एक भविष्यवक्ता उसे कैसे आशीष दे सकता है जिसे वचन दोषी ठहराता है? फिर भी वो ऐसा नहीं करना चाहता कि अपने भाई को चोट पहुंचाए, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना है क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता है और वो परमेश्वर के सच्चे वचन का प्रतिनिधित्व करता है और इससे बिल्कुल भी नहीं हटता है, किसी भी तरह से नहीं। आज्ञा पर आज्ञा और नियम पर नियम, समझे मेरा क्या मतलब है? एक सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग। कितने लोग कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मुझे एक भविष्यवक्ता बनाते। वो ऐसा नहीं करता है, नहीं, वो ऐसा नहीं करता है। वो कलीसिया के हर एक अनैतिक कार्य को दोषी ठहराएगा। ये पासा फेंकने के खेल की पार्टियां और ये सारी चीजें जो वे कर रहे हैं, ताश के पत्तों की पार्टियां, सूप का भोज, वो उनमें से हर एक चीज को दोषी ठहराएगा। वो उन्हें ध्वस्त करके नरक में डाल देगा जहाँ से वे आए हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप उसे स्वीकार करेंगे? नहीं, आज की कलीसिया उसे स्वीकार नहीं करेगी। पेंटिकॉस्ट उसे स्वीकार करेंगे तो ठीक है। वो वहाँ पर चलकर जाता, कहता, तुम कटे बालों वाली इजाबेलों का झुंड, क्या तुम नहीं जानती कि यहोवा यो कहता है का क्या अर्थ होता है? एक छोटे से खाल जैसे दिखने वाले वस्त्र के साथ यहाँ बाहर चलकर जाती है। क्या तुम जानती हो कि तुम हर दिन सैकड़ों पुरुषों के साथ व्यभिचार करने के लिए दोषी हो? यही है जो वो कहेगा। आप कहते हैं तो ठीक है, वह पुराने ख्यालों वाला, वह बूढ़ा गंजे सिर वाला, सफेद बालों वाला व्यक्ति, उसे उस पुलपिट से बाहर निकालो। आओ, तुम्हें देखते हैं, ट्रस्टी बोर्ड, डीकन, उसे यहाँ से बाहर निकालो। तो ठीक है, तुम दयनीय पाखंडियों का झुंड हो। सही है, आमोस इसे ऐसा ही कहता। फिर अपने आप के लिए कहते हैं, हम इस झुंड से जुड़े हुए हैं, हम उस झुंड से जुड़े हुए हैं। तुम शैतान के हो, तुम्हारा पिता, क्योंकि वही वो एक है जो वचन का इनकार करता है। कहते हैं, मैंने अन्य भाषा में बोला और फिर अपने बालों को काटती हैं। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। और बाइबल ने कहा, यह एक उचित बात नहीं है कि एक स्त्री इस तरह से अपने बाल को काट कर प्रार्थना करे। फिर अपने आप को मसीही कहते हैं, आप पर शर्म आती है। कहीं तो एक कोने में रेंग कर जाओ, परमेश्वर के साथ सही कर लो। उन छोटे छोटे कपड़ों को पहनती है और यहाँ आंगन में जाकर और अंगड़ाई लेती है, जबकि आप भली प्रकार और अच्छी तरह से जानती हैं, आप प्रतिदिन 100 पुरुषों के साथ व्यभिचार कर रही हैं। कहा, यीशु ने ऐसा ही कहा, जो कोई भी स्त्री की ओर कुदृष्टि डाले वह उसके साथ व्यभिचार कर चुका। वही वो एक थी जिसने स्वयं को ऐसा प्रस्तुत किया और आपने इसे किया। जहाँ आप संसार की चीजों के लिए मरे हुए हैं, आप उसी में से ऊपर उठे हैं। जैसा कि मैंने कहा आरंभ में, तुम अपना सिर शर्म से फेर लोगे। तुम्हारी आँखें पाप की ऐसी भयानक चीज पर सिकुड़ जाती हैं, बजाय इसके कि स्त्रियों को वासना की दृष्टि से देखें। तुम पुरुष जो इस तरह का काम करते हो और अपने आप को मसीही कहते हो, यही है जो वो आपको बताएगा। मैं आज सुबह उसके वचनों को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वे उसके वचन होंगे, क्योंकि वो, याद रखना, वो एक सच्चा भविष्यवक्ता है। उसे उस वचन के साथ बने रहना होता है। मैं बस उसके वचनों का हवाला दे रहा हूँ। बस ऐसा ही है,
क्योंकि यदि आप उसे लाए हैं तो वो वचन है, तब यहाँ वचन है अपने आप में। हो सकता है आपके पास वो मनुष्य नहीं है, लेकिन आपके पास उसका वचन है, क्योंकि उसके पास प्रभु का वचन होगा। हर एक मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा, वो इसे दोषी ठहराएगा, जैसे कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, वो उस चीज को वापस अनंतता में फेंक देगा, वो इसे दोषी ठहराएगा, यहाँ तक इसमें कि कोई गंध भी न बचे। जी हाँ श्रीमान, आप में से कितने आज सुबह कलीसिया में कितने लोग हैं जो उसे उस पर स्वीकार करेंगे? तब वे यह यीशु नाम का झुंड, वे कहेंगे ओह हम उसे इस पर ले लेंगे, और फिर आपके संगठन वो आपको सीधे इसके साथ बाहर निकाल देंगे। ये सही है, आपकी बाल कटी हुई स्त्रियाँ और आप उसका समर्थन करते हो, ये सही है, आपके पुरुष जिस तरह से वे कार्य करते हैं और आचरण करते हैं, यह सही है। बहुत से लोग कहते हैं एक भविष्यवक्ता होना अच्छी बात है, यह अच्छी बात है यदि आप संसार को सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं और परमेश्वर के साथ और उसके वचन के साथ बने रहने के लिए तैयार हैं। नहीं, आज जो हमारे संप्रदाय हैं, हम उसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, निश्चय ही हम उससे कोई लेना देना नहीं रखेंगे। उसे इसे फटकार लगाते हुए सुने, उसने कहा वही परमेश्वर जिस पर तुम विश्वास करने का दावा करते हो वो तुम्हें नष्ट कर देगा। आप इस विषय में क्या करेंगे? वही परमेश्वर जिसमें पेंटिकॉस्ट विश्वास कर रहे हैं, उन्हीं अनैतिक कामों और उन बातों के कारण जो वे कर रहे हैं और करने की अनुमति दे रहे हैं, वही परमेश्वर उन संगठनों के ऊपर न्याय को लेकर आएगा। यह सही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आमोस ने उनसे कहा था। ओह, उन्होंने कहा हमारे पास अब्राहम है, हमारे पास यहाँ यह है, हमारे पास नियम है, हमारे पास वे याजक हैं, हमारे पास वे भविष्यवक्ता हैं। ओ भाई, वे आंखें सिकुड़ गई जब उसने उनकी ओर देखा और उस वचन को उन पर गरजते हुए सुनाया। जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं श्रीमान, उसने कहा वे उन्हें तुम्हारे मनुष्य के बनाए हुए मत सिद्धांतों से नष्ट कर देंगे। आज वो आपको यही बताएगा, वो वैसा ही कहेगा जैसा उसने तब कहा था। उसने कहा वही परमेश्वर जिसके लिए तुम कलीसियाओं को बना रहे हो, शायद लाखों डॉलर खर्च कर रहे हो, वही पवित्र स्थान जो तुम यहोवा के लिए बना रहे हो, जिसका तुम दावा करते हो कि तुम उससे प्रेम करते हो, वही परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा क्योंकि तुम उसके वचन को अस्वीकार कर रहे हो। आज भी यही हो रहा है, वही परमेश्वर जिसकी सेवा करने का अमेरिका दावा करता है, वो राष्ट्र पर न्याय को लाएगा और इसे नष्ट कर देगा। मैं आशा करता हूँ कि यह इतना गहरा होता जाता है कि आप कभी भी इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वही एक जिसका आप दावा करते हैं कि आप प्रेम करते हैं और अपने स्वयं के मनुष्य के बनाए मत सिद्धांतों के साथ और अनैतिक जीवन और सड़न जो आप में है परमेश्वर के वचन से दूर है, वो किसी दिन आपको नष्ट कर देगा। यही यहोवा यो कहता है, उनके लिए और कुछ भी नहीं बचता है। वचन के साथ पंक्ति में आ जाएं, उन्हें सुसमाचार का प्रचार करें, राष्ट्र को पार करके उन्हें सच्चाई को बताएं। सेवक उपद्रव मचाते हैं और चिल्लाते हैं और बहस करते हैं, लोग दोषी ठहराते हैं, संगठन आपको बाहर कर देते हैं, स्त्रियां अपने सिर को हिलाती हैं और किसी भी हालत में अपने बाल बढ़ने नहीं देती। साल दर साल वे ठीक वैसे ही कपड़े पहनती हैं जैसे पहले पहनती आई हैं। जैसे बदक की पीठ पर पानी को डालना, तब तुम दावा करते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। उसने कहा, यीशु ने कहा, तुमने अपने रीति रिवाजों को लेकर और परमेश्वर की आज्ञाओं को निष्फल बना दिया है। यही एक सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग है, समझे? यह एक आसान मार्ग नहीं है, यह ऐसा नहीं है जो हर कोई सोचता है कि ऐसा हो सकता है। ऊपर और नीचे कूदना और चिल्लाना, हर कोई आपके कंधे को थपथपाता है, तब यह एक चिन्ह है कि आप एक सच्चे भविष्यवक्ता नहीं हैं। यह उन चिन्हों में से एक है कि आपको वो बात नहीं समझी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कब उसकी पीठ को थपथपाया? जब तक कि उनका अपना कोई मतलब न हो, क्या वह पीछे मुड़कर और उन्हें दोषी ठहराता? सही है, वे आमोस की पीठ पर थपथपा नहीं सकते थे, वे एलिया की पीठ को थपथपा नहीं सकते थे, उसने ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया। नहीं श्रीमान, उसने उन्हें परमेश्वर का सत्य बताया। और यदि स्वर्ग इतना महान है और हम जहाँ जा रहे हैं, तो फिर यदि हम छोटी छोटी बातों के साथ पंक्तिबद्ध नहीं हो सकते हैं, तो हम वहाँ पर आत्मा के साथ कैसे पंक्तिबद्ध होंगे? वचन के साथ पंक्तिबद्ध होना है, यही तो सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग है। हालांकि इस बात को कहने के लिए यह उसे तोड़ कर रख देगा। जी हाँ,
उसे इसके साथ एक राष्ट्र को उखाड़कर टुकड़े टुकड़े करना होगा। यह सही बात है, लेकिन यही वो मार्ग है। वो इसे जोर से फटकार लगाएगा। ओ प्रभु, जानते हैं उसने उनसे क्या कहा? हो हल्ला करना। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो उसने कहा, ये आपकी सरकार में नहीं है, ये आप में है। यही है जो उसने कहा। जी हाँ, कलीसिया में हो हल्ला करते हैं, अपनी भक्ति का भेष धरते हैं। यही है जो परेशानी का कारण है। आज देश में साम्यवाद फैलने का जो कारण है, यह साम्यवाद के कारण नहीं है, यह कलीसिया के कारण है, यह लोगों की वजह से है। आज वे अपने आप को मसीही कहते हैं, वे दूतों की तरह गाते हैं, प्रशिक्षित आवाजें और ऐसे बड़े बड़े शब्दों के साथ बोलते हैं जैसे वे प्रधान दूत थे, और परमेश्वर के वचन का अविश्वास करते हैं शैतानों की तरह। बिल्कुल सही है, एक प्रधान दूत की तरह गाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे मैं नहीं जानता क्या कहूं, और परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं। एक मनुष्य प्रचारक जो पुलपिट पर खड़ा होता है और डॉक्टर आदरणीय कहलाता है, और उससे पूछें क्या बाइबल ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे की बात की या पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, और वो आपके मुंह पर हंसेगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेगा, फिर अपने आप को परमेश्वर की संतान कहता है। स्त्रियां जानती हैं कि बाइबल उन्हें कुछ चीजें करने के लिए दोषी ठहराता है, और वे अपने बालों को काटती हैं और संसार की तरह व्यवहार करती हैं और अनैतिक कपड़े पहनती हैं और इस तरह की चीजें, और वे इसे लगातार करती ही रहेंगी जो भी हो, और अन्य जुबान में बोलती हैं और ऊपर नीचे कूदती हैं और चिल्लाती हैं, और उनके पास बूढ़ी महिलाओं के समाज होते हैं और सिलाई की मंडलियां होती हैं और मिशनरियों को कार्य क्षेत्र में भेजते हैं। यह परमेश्वर की दृष्टि में एक दुर्गंध बन गया है। और यहोवा यो कहता है, वह सब कुछ नष्ट कर देगा, वो करेगा। यह एक आसान बात नहीं है, लेकिन एक सच्चे भविष्यवक्ता का यही मार्ग है। वहाँ पर इसे फटकार लगाता है और इसे बोल देता है, चाहे इससे दुख पहुँचे या नहीं। यूहन्ना एक सच्चा भविष्यवक्ता था। उसने कहा, कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर रखी है, उनका यही मार्ग होता है। निश्चय ही परेशानी उस स्त्री में है। स्वर्गदूतों की तरह गाती हैं, यहाँ शैतानों की तरह नाचती हैं, वे नाचते हैं, ऐसे ही करना जारी रखते हैं, ताश खेलते हैं, गुड़दौड़ को खेलते हैं। पेंटिकॉस्टल मनोरंजन के स्थानों में जा रहे हैं, चलचित्र के तमाशों में उनकी भीड़ लगी रहती है, हर स्थान पर किसी भी प्रकार का पुराना नाटक या कुछ भी हो, और सीधे वहाँ पर जाते हैं और घुड़दौड़ होने दो और हर एक चीज, और अपने आप को मसीही कहते हैं और ऊपर जाकर और जय जयकार करते हैं और अन्य जुबान में बोलते हैं और पैर धोते हैं और प्रभु भोज लेते हैं। क्यों? ये ऐसे हैं जैसे एक कुत्ता अपनी उल्टी के पास जाता है। भविष्यवक्ता ने कहा, वैसे ही वे करते हैं। यदि वो चीज संसार की है जिसे आप में से बाहर निकालना था, तो आप फिर से इसकी ओर वापस क्यों लौटते हैं? सही है, बाहर सड़कों पर मटकती हैं, वे इसे कहते हैं रॉक एंड रोल, बाल काटती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं। ओह प्रभु, अपने आप को मसीही कहते हैं, क्या आप? नहीं, अच्छा होगा कि मैं यह ना कहूं। इसलिए मैं उन्हें दोषी ठहराता हूं। यदि मैं इस वचन के साथ बना रहता हूं, यदि यह वचन मेरे पास आता है, तो मैं इस वचन के साथ बना रहूंगा। यही है जो मेरे पास आता है, वचन कि इसे दोषी ठहराए। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने का दावा करते हैं और ऐसी चीजों को करते हैं। क्या आप एक स्त्री की कल्पना कर सकते हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, उसके बालों को कटवाएगी, जबकि वही पवित्र आत्मा इसे दोषी ठहराता है? तो फिर पवित्र आत्मा किस प्रकार का व्यक्ति है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रचारक पुलपिट पर खड़ा है और कोई भी मनुष्य उसे चुनौती देता है कि उसे एक भी स्थान दिखाए जिसने कभी भी ऐसा बपतिस्मा लिया हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के शीर्षकों का उपयोग करते हुए, और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने पर आपके मुंह पर हंसता है और आपको कट्टरपंथी कहता है और कहता है कि वो आत्मा के द्वारा चलाए चल रहा है और कहता है कि उसने पवित्र आत्मा पाया है? क्या पवित्र आत्मा अपने ही वचन का इनकार करेगा? नहीं श्रीमान। क्या आप समझे? मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। मैं नहीं जानता कि कितना समय है, हो सकता है अगला विस्फोट मुझे ले ले, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, मैं ठीक वचन के साथ वहाँ पर खड़ा रहूँगा।
जब मैं न्याय के समय वहाँ आपसे मिलूंगा तो मैं ठीक उस वचन के पास खड़ा रहूंगा। यही है जो मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ। नहीं, आप इस तरह की चीजों को नहीं करते हैं और तब आपके पास पवित्र आत्मा है। एक बार मैं एक सेवक की पत्नी के पास गया, वहाँ वो एक पोशाक पहने हुई बैठी हुई थी, वह भयानक दिख रही थी। आप कहते हैं आपके पास कहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पास अधिकार है, यही वचन है, इस सब का प्रचार करो। आप बहुत से कायर प्रचारक उन बातों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास साहस नहीं है। हो सकता है कि आरंभ से ही आपको प्रचार करने के लिए बुलाया भी नहीं गया हो। जी हाँ, लेकिन परमेश्वर का एक सच्चा सेवक ठीक उस वचन के साथ बना रहेगा। सही है, सेवक की पत्नी वहाँ बैठी हुई थी, एक पोशाक में पूरी तरह से सिकुड़ी हुई, कानों में बालियाँ लटकी हुई थी और श्रृंगार किया हुआ था और छोटे छोटे कटे हुए बाल, जबकि परमेश्वर सारी चीज को गंदगी के रूप में दोषी ठहराता है। और फिर कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है। कुछ समय पहले मैं यहाँ फिनिक्स में कुछ तो इसी तरह के विषय पर प्रचार कर रहा था और सेवक की पत्नी पुलपिट पर बैठी हुई थी, उसके बाल इन लड़कों के जैसे छोटे छोटे कटे हुए घुंघराले थे और एक ऐसी पोशाक को पहने हुए थी कि उसके अंदर वाली स्कर्ट को भी छिपा नहीं सकती थी, अपने घुटनों तक भी नहीं पहुंच रही थी, उसके घुटनों से लगभग 4 या 5 इंच ऊपर थी, वहाँ पर बैठी हुई थी, ऊपर और नीचे कूद रही थी, गीतों में अगुवाई कर रही थी। मैं उसका जितना कड़ा विरोध कर सकता था उतना कड़ा विरोध किया। निश्चय ही वह मुझे दोबारा आमंत्रित नहीं करेगा, मैं उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन वह जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब मैं न्याय के समय खड़ा होता हूँ तो यह मेरे हाथ में नहीं होगा। फिर जाकर और कहें, एक मनुष्य नाम का कहलाने वाला शिक्षक, जो मैं नहीं कहता लेकिन वह नहीं है, एक दिन मैंने एक टिप्पणी की मेरे कुछ मित्रों के सामने। किसी एक शहर में मैं गया था, आप भाई को जानते हैं, और यह भाई अंदर आया, उसने कहा अच्छा, उसने कहा एक बार भाई ब्रैनम हमारे यहाँ आए थे किसी एक शहर में और पश्चिम की ओर, और इस व्यक्ति ने कहा ओह भाई ब्रैनम एक भले मनुष्य है। देखा, वो बेहतर जानता था कि किसी के चरित्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कहा भाई ब्रैनम, लेकिन आप उनके टेप को मत सुनना क्योंकि वे टेप आपको उलझन में डाल देंगे। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि मेरा एक मित्र खड़ा हुआ था, उसने कहा बस एक मिनट श्रीमान, मैं उलझन में था जब तक मैंने टेपों को नहीं सुना। जी हाँ, यही वो अंतर है। मैं यह नहीं समझ सकता हूँ कि एक पवित्र परमेश्वर इस तरह की चीजों को कैसे सहन कर सकता है जैसा कि आप सभी करते हैं। जी हाँ, वही व्यक्ति, उसके साथ एक और व्यक्ति था, ज्यादा समय नहीं हुआ, किसी एक स्थान पर खड़ा हुआ था, बोला भाई ब्रैनम एक भविष्यवक्ता है, वह चीजों को परख सकते हैं और इस तरह की चीजें, लेकिन कहा अब उसकी शिक्षा को मत सुनना क्योंकि वो सही नहीं है। ऐसा कथन कितना पागलपन से भरा और असभ्य है। क्या आप नहीं जानते कि यदि यह मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन यदि परमेश्वर का वचन सच्चा है तो यह भविष्यवक्ता के पास आता है। प्रभु का वचन भविष्यवक्ताओं के पास आया, वे ही एक थे जिन्होंने वचन का अनुवाद किया। तब आप देखते हैं, आप नहीं, इसका यहाँ तक कोई मतलब भी नहीं बनता है, बस किसी छोटे छोटे संप्रदायों के पीछे छिपना। उन दिनों में से एक दिन यह चकनाचूर हो जाएंगे, गल जाएंगे और अधोलोक में नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वदा स्थिर रहेगा। उस चट्टान पर मैं अपनी आशाओं को सर्वदा के लिए बनाता हूँ, प्रभु के वचन पर। बाकी की हर एक चीज को डूबने दो, यदि मैं हर एक मित्र को बाकी हर एक चीज को खो भी दूं, मेरी मित्रता मसीह में है। मेरी आशाएं किसी और बात पर नहीं, केवल यीशु के धार्मिक वचनों पर बनी है। जब मेरा प्राण चारों ओर टूटने लगता है तब वही मेरी पूरी आशा और सहारा होता है। जब उस दिन वो बंदूक फट गई और मैंने देखा, मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ। एक शांति पूर्व एहसास हुआ था, मैंने चारों ओर देखा, मैंने सोचा तो अब यही अंत है। तब एक संप्रदाय मेरे लिए किस काम आता, तब एक संगठन मेरे लिए किस काम आता। मुझे उस ओर परमेश्वर के अग्नि में न्याय के सामने इस वचन के द्वारा न्याय के लिए खड़ा होना होगा। भले ही मुझे बहुत से लोगों को कड़ी फटकार देनी पड़ी, झुकाना पड़ा, मोड़ना पड़ा और अलग होना पड़ा बहुत से लोगों को, लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ कि कर लूंगा, वहाँ से परमेश्वर के वचन के वास्तविक सार को बाहर ला सकूं और वहाँ अनंतता के लिए एक प्राण को तैयार करूं। यह सही है, परमेश्वर को उसके हाथों में लेने दो और इसे एक आज्ञाकारी संतान बनाए। कैसे एक मनुष्य पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस तरह के काम को कैसे कर सकता है, या एक स्त्री जो पवित्र आत्मा के साथ है कैसे ऐसी चीजों को कर सकती है। नहीं, वो पवित्र है और यदि उसका जीवन आप में है तो आप भी वही होते हैं, आप बिल्कुल
उसके जैसे ही होंगे। इज़राइल जैसा कि हमने सोचा, क्योंकि वह दूसरों के साथ गठबंधन करके फल फूल रहे थे, परमेश्वर की उस पर स्वीकृति थी। अब आप जानते हैं, हम आज ऐसा ही सोचते हैं। कुछ दिन पहले मैंने कुछ लोगों से बात की थी यहाँ एक होटल में, जो धार्मिक क्षेत्र के बड़े लोग थे, और उन्होंने मुझसे कहा, परमेश्वर साबित करता है कि वो हमारे साथ है। क्यों भाई ब्रैनम, हम पिछले वर्ष काफी बढ़ चुके हैं। मैं भूल गया कि इस तरह से कितने सैकड़ों हैं। मैंने कहा था, यह जरा सी भी स्वीकृति नहीं है। यह सही है, वैश्यावृत्ति बढ़ गई है, पिछले वर्ष वृद्धि हुई है लगभग 30%। क्या यह बात दिखाती है कि परमेश्वर वैश्यावृत्ति के साथ था? निश्चय ही। ओह, यह तर्क ठीक नहीं है। नहीं, आप यह नहीं कह सकते। नहीं श्रीमान, परमेश्वर अपने वचन के साथ खड़ा होता है। कोई भी दूसरा मनुष्य उसके वचन के साथ खड़ा होगा यदि वह ईमानदार है तो ठीक है। उन्होंने सोचा, क्योंकि उनका एक गठबंधन था। अब यहाँ हम कुछ क्षण के लिए सरकारी मामलों पर आते हैं। हमारे राष्ट्र ने भी परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया है, ठीक जैसे इज़राइल ने किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया, और उनके लोग, उनके याजक और भविष्यवक्ता और इत्यादि उनके लिए अच्छी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं सिवाय गलत भविष्यवाणी करने के, क्योंकि ये वचन के विपरीत है। वो नष्ट हो गया है। हमारा महान प्रिय राष्ट्र हमारे पूर्वजों के अनुभव पर आधारित है, तो फिर वापस वही जाएं जो उनके पास था। सही है, निश्चय ही। इज़राइल एक महान राष्ट्र था, उनके पूर्वजों को देखो, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह बूढ़ा गंजा भविष्यवक्ता उनको वचन दे रहा था, और यह बिल्कुल ठीक उसी तरह से हुआ जैसा उसने कहा था। यहाँ अपना इतिहास पढ़ें और पता करें कि क्या यह सही नहीं है। ये ठीक वैसे ही घटित हुआ जैसा उसने कहा था, और उसने उन्हें दोषी ठहराया। फिर भी वे जो वहाँ पर खड़े थे और पवित्र याजक पवित्र वस्त्रों को पहने हुए थे, इसका छिड़काव कर रहे थे, और इस तरह से या उस तरह से हाथ भी नहीं हिलाते थे, क्योंकि यह कुछ इस तरह से था, एक रीति रिवाज या कुछ तो था। यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम उसके कामों को करोगे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे दोषी ठहराया और उसे एक पेड़ पर लटका दिया और उसे मार डाला। बिल्कुल सही, परमेश्वर ने उसे फिर से उठाकर खड़ा किया। जी हाँ श्रीमान, नहीं वे ऐसा नहीं करेंगे। आज हम आमोस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, और आज हमने एक गठबंधन बनाया है। हमें वो मिला है जिसे हम आज कहते हैं। हम सोचते हैं कि यह परमेश्वर की अनुमति है, क्योंकि हमारे संगठन बढ़ रहे हैं और हर एक चीज उसी तरह से जा रही है जिस तरह से यह है। हम सोचते हैं कि यह इस बात पर परमेश्वर की अनुमति है। आप जानते हैं, मैं सोचता हूँ लगभग 20 या 30 लाख और प्रोटेस्टेंट जुड़ गए हैं, और कैथोलिक की संख्या तो कई लाख से भी अधिक हो गई है। समझे, वे सोचते हैं कि उनका कैथोलिक होना ही यह परमेश्वर की स्वीकृति है। प्रोटेस्टेंट सोचते हैं कि उनका प्रोटेस्टेंट होना ही यह परमेश्वर की स्वीकृति है। ओह, यह बकवास है। यह केवल युद्ध में झोंकने का सामान है। यह परमाणु बम की राख है। यह परमेश्वर का क्रोध है जो विस्फोट के लिए तैयार हो रहा है। यह बिल्कुल सही है। आप मेरी सुनिए, मैं आपको प्रभु का वचन बताऊंगा। आमीन। हमारी ओर देखें, आज संसार की ओर देखें, हमारे राष्ट्र की ओर देखें। हम संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ गए हैं। इसमें क्या है? ये अधर्मियों का झुंड है, और हम में इतनी हिम्मत आ गई है, यहाँ तक कि हमारे सत्र की सभा शुरू होने से पहले प्रार्थना तक नहीं होने देते। क्या मैंने अभी यहाँ नहीं पढ़ा, जब तक दो लोग सहमत न हो वे भला कैसे चल सकते हैं? परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है जब तक कि वो इसे अपने सेवकों भविष्यताओं पर प्रकट न कर दे। वे दो जन कैसे चल सकते हैं जब तक वे सहमत न हो? जब हमने मुसलमान, बुद्ध, नास्तिक, अधर्मी, स्वार्थी, इसमें बाकी सभी को शामिल कर लिया है, आप सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ इस तरह की चीज में वास कर सकता है? तो ठीक है, आप कहते हैं कि खैर, हम उनके साथ गठबंधन में हैं। हमें सारे पश्चिमी देशों का पूरा संरक्षण प्राप्त है। उनके आसपास के सभी राष्ट्र उनकी सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन उस भविष्यवक्ता ने कहा, परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा। जिस परमेश्वर की तुम सेवा करते हो, वही तुम्हारी मूर्खता के लिए तुम्हें नष्ट कर देगा। आज सुबह भी वो इसी बात को कहता। वो व्हाइट हाउस से लेकर गरीब किसानों तक ऊंची आवाज में चिल्लाता। वो निश्चय ही चिल्लाता। वो उन्हें परमेश्वर के वचन से फटकार देता। वो निश्चय ही करता। यही एक सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग है। हमारी ओर देखो कलीसियाएं। ओह, हम महान पवित्र रोमन कैथोलिक कलीसिया हैं। बाइबल में बोला गया कि वो एक वेश्या होगी। हम पूर्वजों के कुलपति हैं। प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं सभी एक साथ एक हो गए हैं और कहलाता है कलीसियाओं का विश्व परिषद कहलाता है। वे बिचारियों की वेश्या, बाइबल ने कहा, बिल्कुल यही कहा गया है। और फिर भी हम सोचते हैं और अब सभी कलीसियाएं एक साथ हो रही हैं। श्रीमान कॉलिंस, मेरे एक मित्र भाई जो कैलिफोर्निया या एरिजोना से आए थे, आपका एल्मर, मैंने कहा तो मुझे लगता है कि आप किसी अच्छी छोटी मेथोडिस्ट कलीसिया में जा रहे हैं। कहा, मैं तब वहाँ से बाहर आ गया जब वे वहाँ कलीसियाओं के परिषद के साथ जुड़ गए। मैंने कहा, परमेश्वर आपको आशीष दे, आप राज्य के निकट आ रहे हैं भाई। जी हाँ श्रीमान। मत सिद्धांत लोगों के साथ संगति पर निर्भर करता है और उनके मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत के साथ और परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं। आज हमें एक भविष्यवक्ता की आवश्यकता है जो उस वचन को वहाँ पर जोर से गर्जे। बिल्कुल सही है, जी हाँ, वे आपस में ही सुरक्षा को लेते हैं। ओह, हम जुड़ गए हैं, हम पेंटिकॉस्टल लोग, निश्चय ही हम कलीसियाओं के विश्व परिषद में जुड़ गए हैं क्योंकि वहाँ हमारी संगति होती है। हम उन्हें वहाँ जीत लेंगे, जैसे एक स्त्री शराब खाने में जाती है कि अपने पति के साथ शराब पिए ताकि उसे परमेश्वर के लिए जीत सके। आज के लिए कुछ ऐसा है जैसे पति शराब खाने में जाता है कि शराब पिए ताकि उसे परमेश्वर के लिए जीत सके। बकवास है, शैतान की भूमि से दूर रहें। जब कोई भी उस वचन का इनकार करता है तो मैं इसके विरोध में हूँ। यह मुझे हर संगठन के विरोध में बना देता है क्योंकि ये वचन के विरुद्ध है। हर एक विश्वासी को इसी तरह से महसूस कराना चाहिए। तो ठीक है, वे कहते हैं, लेकिन याद रखना, हमारे पास, मैंने अखबार में एक बड़ा लेख पढ़ा, किसी ने मुझे एरिजोना से भेजा है कि कैसे यह कुलपति फलाना और फलाना उस दिन कहा गया जॉन 22वां पोप या जो भी वे उसे कहकर बुलाते हैं, उसका वह एक भला व्यक्ति है। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कलीसियाओं को एक करने पर बात की, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को एक साथ। कहा, हो सकता है कि ऐसा हमारे दिनों में ना आए, लेकिन अगले 15 या 20 वर्षों में यह यहाँ पर होगा। मैंने कहा, लड़के, तुम एक कुलपिता होने पर तुम भविष्यवाणी कर रहे हो और तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। यह हमारे सोचने से भी अधिक देर हो चुकी है। जिस व्यक्ति ने मुझे यह लिखा, उसने पन्ने के ऊपर लिखा था, यह हमारे सोचने से भी अधिक देर हो चुकी है। वह टेपो को भी सुन रहा था। जी हाँ श्रीमान, उसने कहा, यह हमारे सोचने से भी अधिक देर हो चुकी है। कहा, भाई ब्रैनम, क्या आपने इसे वर्षों पहले नहीं कहा था? मैंने कहा, निश्चय ही। जी हाँ श्रीमान, यह घटित हो रहा है क्योंकि यह प्रभु का वचन है, इसे होना ही है, निश्चय ही। जी हाँ, वे कहते हैं, तो ठीक है, यह पवित्र कुलपति, क्या आपको नहीं लगता कि उसे इससे अधिक कुछ और पता होना चाहिए? नहीं श्रीमान, यदि वह परमेश्वर के वचन का इनकार करता है, उसे इस तरह देखता है, तो उसे पता नहीं हो सकता। मैं परवाह नहीं करता कि कितने पोप, भविष्यवक्ता और आपके बीच में और क्या क्या हैं। यदि आप वचन से बाहर हैं, तो आप वचन से बाहर हैं। यह सही है, जब वे परमेश्वर के उसी वचन का अस्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर भला कैसे कभी ऐसी चीज को आशीष दे सकता है? वह अपने वचन के अलावा किसी भी चीज को कैसे आशीषित कर सकता है? कुछ तो जो उसके वचन के विपरीत है, वह कैसे इसे इनकार कर सकता है? आप उस कैंसर को कैसे आशीष दे सकते हैं जो आपको खा रहा है? आप कैसे एक बिजली के तार को आशीष दे सकते हैं जिसे आप पकड़े हुए हैं? आप कहते हैं, ओह, मुझे पकड़ लो और मुझे जला दो, यह तो पागलपन होगा। परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध किसी भी चीज को आशीषित कैसे कर सकता है? इसलिए वचन पर वापस आ जाएं। आप प्रचारकों के झुंड, शिकारी कुत्तों के जैसे, आपके साथ क्या मामला है? आप यहाँ बाहर जाते हैं और अपने जन्मसिद्ध अधिकार को कुछ मांसाहारी भोजन को खाने के लिए बेच देते हैं, किसी कैडिलैक कार या किसी चीज में घूमने के लिए, या कहीं कोई बड़ी ऊंची हवेली और लाखों डॉलर की एक बड़ी कलीसिया के लिए और इस तरह की सारी चीजों के लिए, और अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को बेच देते हो और अपने सभा के लोगों को परमेश्वर का वचन प्रचार करने में लज्जाते हो और डरते हो। बोलो, क्या आपको अपने आप से लज्जा नहीं आती और अपने आप को एक सेवक, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता कहते हो? संसार की गंदगी के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बेच रहे हो। तुम में से क्या उत्पन्न होगा? वही जो ऐसाओ ने किया। ओह, क्या ही शर्म की बात है। ओह नहीं, एक पवित्र परमेश्वर जो अपने वचन के ऊपर नजर रखता है ताकि इसे प्रमाणित करे, ऐसी किसी चीज को आशीषित नहीं कर सकता है जो उसके वचन के विरुद्ध हो। अब सुनिए, मैं जानता हूँ कि मुझे थोड़ी देर हो गई है और हो सकता है कि मैं आपको घुटन दे रहा हूँ, लेकिन देखिए, मैं आपसे कुछ तो पूछना चाहता हूँ। कैसे एक पवित्र परमेश्वर जिसने अपने वचन को बोला और कहा, अब आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन यह नहीं टलेगा, इसका एक वचन भी न टलेगा, अब वो भला किसी ऐसी चीज को कैसे आशीषित कर सकता है जो उसके विपरीत है? वह ऐसा कैसे कर सकता है? देखो, वह स्वयं को साबित करता है, वह अपने वचन को प्रमाणित करता है, वो वही कहता है जो सही है, सदस्यता के आधार पर नहीं। मोआब की ओर देखो, मोआब के पास भी उसका वचन था, मोआब इज़राइल के पास उसका वचन था, और मोआब ने उसके वचन के साथ भक्ति का एक भेष धरा था। उन्होंने 7 बलिदानों को चढ़ाया, शुद्ध बैल, 7 वेदियों पर सिद्ध संख्या जो सिद्ध बलिदान था। फिर इसके अलावा उसने 7 मेढ़े लिए, ये बता रहे थे कि वे आने वाले परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते हैं, और उन्हें वहाँ चढ़ाया था, उनके उच्च आर्क बिशप के साथ, उनके सारे गणमान्य लोग, उनके सभी याजक और महायाजक, बाकी के हर एक जन अपने राजाओं और राष्ट्रपतियों और जो भी हैं उनके साथ चारों ओर खड़े थे, और उन्होंने इसे उतना ही धार्मिक रूप से चढ़ाया जितना वे कर सकते थे, इसराइल के प्रतिकूल किया। और वहाँ पर नीचे इसराइल था, ऐसा दिखाई दिया एक छोटा सा विद्रोही लोगों का झुंड जैसा है, लेकिन इसराइल के साथ कौन था? उनके अभियान में परमेश्वर था, वो अपने आप को साबित कर रहा था कि वो उनके साथ है। समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पास कितने भी कुलपति हों, पोप हों या जो कुछ भी और हों, परमेश्वर उनके साथ नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को उनके साथ साबित नहीं करता है। और जब वे उसके वचन से बाहर हैं और उसके वचन का इनकार करते हैं, वह उनके साथ कैसे हो सकता है? उनके बीच जीवित परमेश्वर का कोई चिन्ह नहीं है। परमेश्वर संयुक्त राष्ट्र में कैसे हो सकता है जबकि दो लोग बिना सहमति के साथ नहीं चल सकते? अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ एक चर्च ऑफ क्राइस्ट है, नाम के कहलाने वाले पेंटिकॉस्टल के साथ जुड़े हुए हैं। पेंटिकॉस्ट कहता है कि वे अन्य भाषा में बोलने में विश्वास करते हैं, वे पवित्र आत्मा के प्रमाण में विश्वास करते हैं जो अन्य जुबानों में बोलना है। वे कहते हैं कि वे इसमें और उसमें और इत्यादि चीजों में विश्वास करते हैं, वे चिन्हों और चमत्कारों में विश्वास करते हैं। चर्च ऑफ क्राइस्ट उन पर हंसते हैं, कहते हैं तुम अज्ञानियों के झुंड हो। यह बीते दिनों में होता था, जब तक दो लोग एक सहमति में ना हो वे साथ साथ कैसे चल सकते हैं? और वे एक साथ जुड़ गए हैं, वे क्या कर रहे हैं? वे एक दूसरे से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ऐसी चीजों से दूर रहें। मेरी सुरक्षा मसीह में है और उसके वचन में है, क्योंकि उसका वचन स्वयं वही है, यह सही है। वहाँ जीवित परमेश्वर के कोई चिन्ह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यही है जो यीशु ने कहा, यदि मैं वचन को प्रकट ना करूँ तो इसे विश्वास मत करो। यदि परमेश्वर नहीं बोलता है और मेरे जरिए से भविष्यवाणी नहीं करता है, और ना मेरे जरिए से बोलता है और ना मेरे जरिए से करता है जो मसीहा को करना चाहिए, तो फिर तुम मेरा विश्वास मत करो। फिर एक व्यक्ति कहता है कि वह परमेश्वर का भेजा गया भविष्यवक्ता है और वचन का इनकार करता है। परमेश्वर ऐसी चीजों के लिए दया करे, परमेश्वर भला ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे पूछने दो, अब यह पूछता हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं आपसे फिर से कब बात करूँगा, यह तो परमेश्वर पर निर्भर करता है। मैं बस भोजन को जमा कर रहा हूँ, जैसे कि उसने मुझे उस समय उस दर्शन में बताया था, इसे भंडारों में रख रहा हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आमोस कैसे पहले से ही देख सकता था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है? क्यों यह अच्छा लग रहा था? देखो, अब यहाँ पर देखो, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सब टेप पर है और ये जाता है, ये सारे संसार भर में जाएगा, समझे? अब कैसे, यहाँ देखो, वहाँ इसराइल था, उनके धर्म विद्यालय पहले से कहीं बेहतर हालत में थे, उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं है, उनके पास उनके खुद के धर्म थे, वहाँ कोई भी नहीं कहता तुम यहोवा की आराधना नहीं कर सकते हो, आगे बढ़ो। मूर्ति पूजक राष्ट्रों ने कहा, आराधना करो, हमने एक दूसरे से एक समझौता किया है। उस भविष्यवक्ता ने इस सब में से होकर देख लिया था, समझे? वैसे ही आज एक भविष्यवक्ता इसमें से होकर देखेगा, समझे? आगे बढ़ो। और इसराइल ने कहा, तो ठीक है, आओ हम खाएं, पिएं और आनंद करें। इसलिए वे एक साथ एक झुंड हो गए और उनमें से कुछ मत सिद्धांत बना दिए और संगठन, संप्रदाय और इत्यादि, और सबका अपना अपना ढांचा तैयार कर लिया। और उनकी स्त्रियां वहां बस सुख साधन में जीती और पाप में जीवन बिताती। लड़के वे नाच गाने और मनोरंजन के स्थानों में जाते, वे कम कपड़े पहनती थी और आकर्षक छोटे वस्त्र पहनती थी। यदि आपने कभी उनके उन दिनों के किसी इतिहास में देखा है कि वे कैसे दिखते थे, ओह लगभग एक तिहाई उतने ही बुरे जितना कि आज के लोग हैं। हालांकि पूरी तरह से नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। जी हाँ, और किस तरह से उन्होंने किया और इसी तरह से करना जारी रखा, और वे राजा और वे याजक और बाकी के सभी लोग। यीशु ने कहा, हे कपटियों, तुम विधवाओं के घरों को निगल लेते हो। उसने यह कहा और ये सारी चीजें जो वे कर रहे थे, वो भविष्यता वहाँ खड़ा था, उस पर नीचे की ओर देख रहा है। इस प्रकार का वो राष्ट्र, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका हृदय टूट गया था। जी हाँ श्रीमान, अब आप कहते हैं वो कैसे जानता था कि क्या होने जा रहा है? वह इसे पहले ही कैसे देख सकता था? कैसे ये सब अच्छा लग रहा था? क्यों? उनके पास खाने को भरपूर था, उनके पास पहनने को भी बहुत कुछ था, वे उनके पास उनकी बड़ी बड़ी कलीसियाएं थी, वे फल फूल रहे हैं, हर जगह पैसा लगा था, सुख साधन, सड़क पर नाच गाना, अनैतिकता और बाकी की हर एक चीज बस चल रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज अमेरिका है, टेलीविजन गंदे चुटकुलों से भरा हुआ है, अदनंगी औरतें, बाकी की हर एक चीज जो आप देखते हैं वह बस कीचड़ और पाप है। आपको टेलीविजन देखने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी आंखें खोलें, कहीं भी देखें। लड़कियां, लड़के, पुरुष, स्त्रियां धूम्रपान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वे इजाबेल खुद को मसीही कहती हैं। वे गंदे शैतान खुद को मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक और पेंटिकॉस्टल कहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। यह सही है, यह सब कुछ अच्छा दिखता है। तुम इसे कैसे बचा सकते हो? यदि हम ऐसा करेंगे तो कैसे? कैसे? यहाँ देखो तो ठीक है, हमारे पास और अधिक 10 लाख लोग हैं, हमारे पास हमारी इमारतें, ओह हमारी कलीसियाएं बहुत बड़ी हैं, हमें नई कलीसियाएं बनाना होगा, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम नहीं जानते कि इसका क्या करें। क्यों? हम बस राष्ट्र में सबसे अच्छे स्थानों का निर्माण करते हैं, वहाँ सबसे बड़ी कलीसियाएं, हम उनके मालिक हैं, और हमारे पास अब भी बहुत सारा पैसा है। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है? नहीं, आप उसके वचन से बाहर हैं। और भाई ब्रैनम, आपका मतलब है कि परमेश्वर इसे नष्ट करने जा रहा है? जी हाँ, उनमें से हर एक को। आप कैसे जानते हैं? आमोस, तुम्हें कैसे पता चला? जैसे एक डॉक्टर किसी बीमारी का निदान करता है, जब वो उस बीमारी को देखता है जो रोगी पर है, वह जानता है कि क्या करना है, वो जानता है कि उस मरीज को क्या हुआ है, वो जानता है कि यह तकलीफ कितनी आगे बढ़ गई है, और वो जानता है कि क्या होने वाला है। एक भविष्यवक्ता, एक सच्चे भविष्यवक्ता के साथ ऐसा ही होता है। जब वो देखता है, मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, जब वो पाप को आगे बढ़ते हुए देखता है, तो ये खाता हुआ कैंसर है और ये पेंटिकॉस्टल और बाकी के सारे लोगों में इस तरह से आगे बढ़ चुका है, ये वापस नहीं आ सकता, ये बहुत विकसित हो चुका है, वे नष्ट होने जा रहे हैं। इसी तरह से आमोस बीमारी का निदान कर सका, उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा इसका निदान किया। इस तरह एक सच्चा भविष्यवक्ता मामले का निदान करता है और उन महिलाओं से कहता है, जब तुम अच्छी तरह से जानती हो तो तुम कभी भी कटे हुए बालों के साथ न्याय में जाने की कोशिश मत करना। आप पुरुषों से कहता हूँ, आप में से बाकी लोग और तुम प्रचारक वचन का इनकार करते हो और भक्ति का भेष धरते हो और इस मुद्दे से बचने के लिए संगठनाओं से जुड़ रहे हो, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हो, आप उसी वचन की ओर देखते हैं जिसे सच्चे भविष्यवक्ता देखते हैं। बीमारी के निदान ने कहा, मृत्यु, अलगाव, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह वह बीमारी को जानता है, वो जानता है कि इसके किस प्रकार के लक्षण हैं। इस राष्ट्र की ओर देखो, जब आप कहते हैं पेंटिकॉस्टल समाप्त हो चुका है, जब वे आपको कलीसिया में भी नहीं आने देंगे क्योंकि आप महिलाओं के कटे हुए बालों के बारे में प्रचार करते हैं और बाइबल इसे दोषी ठहराता है, डरते हैं कि आप इस विषय में कुछ तो कहेंगे। यहाँ एक दिन जब मैं कुछ अभियानों की योजना बना रहा था, रॉय बॉर्डर्स पश्चिमी तट पर थे, वे उसे एक साथ लेकर आए, सेवकों का एक झुंड, लगभग ओह मुझे लगता है कि उनमें से 40 या 50 थे, जहाँ मेरी एक बड़ी सभा हुई थी। उन्होंने कहा, श्रीमान बॉर्डर्स, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा, क्या ये सच है कि भाई ब्रैनम बपतिस्मा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का उपयोग करते हैं? श्रीमान बॉर्डर्स एक बहुत ही सम्मानित सज्जन व्यक्ति हैं, जैसा कि आप जो यहाँ से हैं,
भाई बॉर्डर्स को जानते हैं, उसने कहा श्रीमानो, उसने कहा भाई ब्रैनम जब वो अभियान में बाहर होते हैं तो कहा वो प्रचार नहीं करते, वो बस आगे बढ़कर और आपके बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, बस यही है जो वे करते हैं। कहा यह वो नहीं है जो मैंने आपसे पूछा था। कलीसिया के प्राचीन ने कहा क्या वो, अब उनके पास टेप थे, वे जानते हैं। कहा क्या वो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं? उसने कहा हाँ, उनकी अपनी कलीसिया में, यही एकमात्र वो स्थान है जहाँ वो बपतिस्मा देते हैं, उनकी अपनी कलीसिया में। उसने कहा बस इतना ही, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ, हम उसे नहीं चाहते, हम अपने लोगों के बीच ऐसे विधर्मी को नहीं चाहते। और एक दिन जब मेरे अच्छे मित्र एड डॉल्टन को बैप्टिस्ट कलीसिया से एक पत्र मिला, उसने कहा हम आपको बैप्टिस्ट संगति से बहिष्कृत करते हैं क्योंकि आप यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने के विधर्म में जुड़े हुए हैं। मैं पौलुस के साथ खड़ा होना चाहूँगा जिसे संसार विधर्मी कहता है, इसी तरह से मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ क्योंकि यह उसका वचन है। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ, ओ निश्चय ही। डॉक्टर बीमारी का निदान करता है, वो देखता है कि यह कहाँ पर है। एक सच्चा भविष्यवक्ता वचन के द्वारा बीमारी का निदान करता है। वो क्या करता है? एक डॉक्टर लक्षणों के द्वारा ही बीमारी का निदान करता है, क्या ये सही है? वो लक्षणों को देखता है और वो देखता है कि मरीज को क्या समस्या है, वो देखता है कि यह बीमारी कितनी विकसित हो चुकी है और कहता है कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और एक सच्चा भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को लेता है और बीमारी का निदान करता है, उसमें दवा को डालता है और लोग इसे वापस उसके मुंह पर फेंक देते हैं। क्या होने जा रहा है? नाश, ऐसा ही है। सुख विलास से प्रेम करने वाले, संसार की चमक धमक से ग्रस्त कहलाने वाले ढोंगी, लेकिन यही एक सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग होता है, समझे? ओह प्रभु, वह बीमारियों को देखता है, उसने देखा कि वे वचन से दूर हो गए हैं, उसने वचन को देखा और वो उन परिणामों को जानता था जो आने वाले थे, उसने उस सुख साधन को देखा जिसमें वे जी रहे थे, देखा कि वे स्त्रियाँ किस तरह से व्यवहार कर रही हैं, उसने देखा कि वे याजक किस तरह से कर रहे हैं, कैसे वे परमेश्वर की सच्ची आराधना से दूर हो गए थे और इस तरह की चीजें। वहाँ उसके पास उत्तर था, उसने कहा जिस परमेश्वर की तुम सेवा करने का दावा करते हो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। क्यों? तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। और फिर भी उन्होंने सोचा कि उसने ऐसा किया है, क्या मैंने अभी इसी बात को नहीं पढ़ा? दूसरा पद, चौथा, दूसरा अध्याय, चौथा पद, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है कि धरती के सभी परिवारों में से मैंने तुम्हें चुना है, और फिर भी तुम मेरी आज्ञाओं पर चलने से इनकार करते हो। आप सोचते हैं, वह छोटा गंजे सिर वाला भविष्यवक्ता उस सफेद दाढ़ी के साथ वहाँ खड़ा था, उसकी आंखों में तेज चमक थी जैसे आग की लपटें निकल रही हों, उन याजकों के झुंड और इत्यादि से बात कर रहा था और कहा तुम पाखंडी लोग जिस परमेश्वर की सेवा करने का ढोंग कर रहे हो वही परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा। आप सोचते हैं कि उसे सहयोग मिलेगा? उसने कहा ओह प्रभु, वो आज कोशिश करे और देखे कि क्या उसे मिलेगा। नहीं, लेकिन वो क्या करेगा? यही एक सच्चे भविष्यवक्ता का यही मार्ग है। उसके पास वचन था, वो जानता था कि यह क्या है। पुराने समय के मिकाया की तरह, वो छोटा बालक जिसे मैंने समर्पित किया, तब मैंने इसमें का कुछ हिस्सा कुछ मिनट पहले छोड़ दिया क्योंकि मैं समय बचाने के लिए जल्दी कर रहा था। लेकिन मिकाया जब वो अहाब के सामने खड़ा हुआ, उसने उनकी तरफ देखा, वह वचन को जानता था। मिकाया ने उनसे वचन कहा। क्यों? मिकाया ने अपने दर्शन को जांचा, उसकी शिक्षा को परमेश्वर के वचन के साथ जांचा और उसने देखा कि उसकी शिक्षा और वचन एक ही थे, क्योंकि वचन ने कहा कि वो अहाब को शाप देगा और वो कुत्तों से उसका लहू चाटने का कारण बनेगा। वचन ने यही कहा था, इसलिए मिकाया के पास एक दर्शन था। यही है, वो एक भविष्यवक्ता था। देखो मेरे पास कौन सा वचन आता है, और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु परमेश्वर, मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहाँ खड़े हुए इन प्रचारकों के झुंड से क्या कहूँ? यहाँ ये सारे संगठन हैं, देश में हर एक जन मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। प्रभु, यहाँ मैं राजा के सामने खड़ा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए? और वो एक दर्शन में चला गया, कहा ऊपर जाओ, आगे बढ़ो। कहा लेकिन मैंने इज़राइल को बिना चरवाहे की उन भीड़ों के समान तितर बितर देखा है। जी हाँ, उस जिले का पुरोहित वहाँ चलकर गया और उसके मुंह पर जोर से मारा और कहा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, जब यह मुझ में से निकल गया तो वो कहाँ गया?
उसमें से निकला। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा, उसने एक शैतान को उनके बीच नीचे आने दिया क्योंकि वे आरंभ से ही वचन से बाहर थे। बाइबल ने कहा यदि वे वचन का विश्वास न करें वो उन्हें बड़े भ्रम में डाल देता है ताकि एक झूठ पर विश्वास करें और इसके द्वारा शापित हों। ठीक यही है जो ये संगठन और इस राष्ट्र के लोग आज कर रहे हैं, एक झूठ पर विश्वास कर रहे हैं कि इसके द्वारा शापित हों, क्योंकि आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा तुम बचाए जा सको। पंक्तिबद्ध हो जाओ संगठनात्मक इत्यादि लोगों। जी हाँ, अब इन दूसरों ने क्या किया, इन दूसरे भविष्यवक्ताओं ने क्या देखा? वे भविष्यवक्ता थे। जी हाँ श्रीमान, वे भविष्यवक्ता थे, लेकिन यदि वे रुककर और वचन के साथ अपनी भविष्यवाणी की जांच करते, यदि मेथोडिस्ट लोग आज रुककर और अपनी भविष्यवाणी की जांच करें तो वे कभी भी दूसरे व्यक्ति पर छिड़काव नहीं करेंगे। वे पवित्र आत्मा को पाएंगे, वे हर एक को यीशु मसीह के नाम में डुबाकर बपतिस्मा देंगे। यदि असेंबली ऑफ गॉड आज रुककर और उनकी भविष्यवाणी को देखें तो वे वचन पर वापस आ जाएंगे। यदि आज वननेस रुककर और उनकी भविष्यवाणी की जांच करें तो वे वचन पर वापस आ जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं यदि वे भविष्यवक्ता रुक जाते और उनकी भविष्यवाणी की जांच की होती, उन्होंने तर्क किया, उन्होंने कहा यह तो हमारा है इसलिए हम रामोत गिलात पर चढ़ाई करेंगे और उसे ले लेंगे क्योंकि वह तो हमारा है, यहोशू ने हमें उसे दिया था। लेकिन मिकाया ने कहा यह सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन बात यही है आप तर्क नहीं करना चाहते, आप वही विश्वास करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने कहा है। कुछ भी तर्क मत करो। क्या होता यदि अब्राहम तर्क करता, वो कैसे कभी अपने देश को छोड़ता, कैसे वह 100 वर्ष का होकर अब भी परमेश्वर को स्तुति दे रहा होता और कैसे उन्हें सारा के जरिए से बालक होता और उसके 90 की आयु में। तर्क वितर्क को दूर करें, आप केवल विश्वास करें। आप शैतान को यह बोलने देते हैं तुम जानते हो भाई ब्रैनम कुछ नहीं केवल एक ढोंगी है। अब रुककर मुझे देखने दो कि क्या वो ढोंगी है, आओ हम देखें कि क्या वो सही शिक्षा दे रहा है या नहीं। मुझे बाइबल पर वापस जाकर देखने दो। नहीं, ना जाएं, वो आपको ऐसा नहीं करने देगा, नहीं नहीं समझे। लेकिन वह मेरे बारे में कुछ बुरा कहेगा और शायद उसे ऐसा कहने का अधिकार भी हो। फिर आप उसी बात को पकड़ लेते हैं, रुककर और सोच विचार करना आरंभ करते हैं, हाँ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे वैसा नहीं करना चाहिए था। आप मेरी ओर देखना आरंभ करते हैं तो आपको बहुत सी कमियां मिलेंगी और आप प्रभु यीशु की ओर देख सकते थे, आप वहां भी बहुत कमियां निकाल सकते थे। उसकी ओर देखें, बस एक मिनट, मैं आप में से हर एक को सेवक की भूमिका में रख रहा हूं। अब हम भूल जाएंगे कि वो कभी धरती पर था। यहां पर एक लड़का है जिसने साबित किया है सारे राष्ट्र भर में कि वो एक नाजायज बालक जन्मा है। उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था, इससे पहले उसकी माँ और उसके पिता का कभी विवाह होता, इससे साबित हो गया है। अब वे वचन की ओर नहीं देख रहे हैं, एक कुआरी गर्भवती होगी, वे बस वही कहेंगे जो वे सुनते हैं, देखो एक अवैध बालक। क्या उन्होंने उसे नहीं बताया कि वह पाप में जन्मा था और उन्हें यह सिखाने की कोशिश करता है, मैं समझे। और देखो वो क्या कर रहा था, वो असल में उस देश की हर कलीसिया को तोड़ फाड़ कर रहा था। क्या यह सही है, संगठनाएं बाकी की हर एक चीज, वो क्या था, बस कोई बड़ी उम्र का लड़का जो इस तरह से इधर उधर घूम रहा है, नौजवान, कोई संप्रदाय नहीं। मुझे बताओ कि तुम किस कलीसिया से संबंध रखते हो, तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम कहते हो कि यूसुफ तुम्हारा पिता नहीं है, यूसुफ मेरा पिता नहीं है, वो कहता है। अच्छा तुम्हारा पिता कौन है, परमेश्वर मेरा पिता है, तो ठीक है तुम कट्टरपंथी हो, बिल्कुल यही है जो तुम हो, तुम एक मनुष्य होते हुए और कह रहे हो कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है। काश उन्होंने इसे वचन से जांचा होता, हालेलुया। आप नहीं देखते क्या है, वचन को देदारी होना था, उन्होंने उनके दर्शन की जांच वचन के साथ नहीं की। ऐसा ही है, यही मामला आज भी है, आप अपने दर्शनों की जांच नहीं करते, आपकी भविष्यवाणी और आपकी शिक्षा की परमेश्वर के वचन के साथ जांच नहीं करते। कोई तो आपको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, तब आप उनसे संबंध बिगाड़ लेते हैं, जैसा कि आमोस के समय लोगों ने किया, आप भी वही काम करते हैं। अब यहाँ देखें, वो इसी स्थिति में है, अब आप उसे दोषी ठहराते, हो सकता है यह सही है यदि आप वचन पर वापस जाकर नहीं देखते हैं, वे आज भी वही करते हैं, वे आज उसे दोषी ठहराते हैं। क्या हो यदि आप महिलाएं यहाँ और यहाँ पर, जी हाँ, क्यों नहीं आप वचन के साथ अपने कटे हुए बालों के विचार की जाँच करती हैं और देखती हैं कि ये क्या कहता है, समझे। आप उन चीजों को क्यों नहीं करती, आप अपने बपतिस्मे की जांच क्यों नहीं करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो झूठी त्रिएकता कहलाती है, जो कि संसार में कुछ भी नहीं सिवाय एक परमेश्वर के तीन कार्य स्थान के, जो शीर्षक हैं
पिता कोई नाम नहीं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम जैसी कोई चीज नहीं होती। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम जो कि प्रभु यीशु मसीह है। अपने बपतिस्मा की जांच उस तरीके से करें जिस तरह बाइबल में हर किसी का बपतिस्मा हुआ है। यदि आप अपने विचार को वचन के साथ जांचते हैं तो आप वापस आकर और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे। पौलुस ने उन्हें यही करने के लिए कहा था और कहा यदि कोई और कुछ अलग सिखाता है तो उसे शापित होने दो, यहाँ तक यदि कोई एक दूत भी नीचे आए। आप जानते हैं बहुत सी बार वे दूत नीचे आए हैं। लड़के किस तरह से पेंटिकॉस्ट इसे जोश के साथ स्वीकार करते हैं। जब संत मार्टिन वहाँ खड़ा था और यहाँ एक बड़ा तेज प्रकाशमान जीव आकर उसके सामने खड़ा हुआ था, उसके विषय में क्या? एक व्यक्ति जिसने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, जिसने पवित्र आत्मा में विश्वास किया और वचन का पालन किया और रोमनों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और उसके साथ सब कुछ किया। वे उसे उनके सिद्धांत और मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा देने का यत्न कर रहे थे। वो व्यक्ति वचन पर खड़ा था। एक दिन उसकी शक्ति में शैतान उसके पास आए और उससे बात करने की कोशिश की। उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन शैतान इस तरह से आया जैसे मसीह मुकुट पहने हुए सोने की चप्पल पहने हुए था। वहाँ खड़ा हुआ और कहा क्या तुम? उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी। कहा मार्टिन क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मेरी आराधना करो। मार्टिन ने उसकी ओर देखा, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा मार्टिन क्या तुम मुझे नहीं पहचान सकते? कहा मैं तुम्हारा प्रभु और उद्धार करता हूँ। कहा मेरी आराधना करो। उसने ऐसा तीन बार कहा और मार्टिन ने यहाँ वहाँ देखा। उसने देखा मसीह को उसके लोगों के द्वारा आगमन पर ताज पहनाया जाएगा, वह सोने की चप्पल नहीं पहनेगा। उसने कहा शैतान तुम मुझसे दूर हो जा। लड़के क्या पेंटिकॉस्टल लोग पूरे जोश से इसे नहीं स्वीकार करते? लड़के एक प्रकाशमान चमकता हुआ दूत, वह महिला शिकागो आई जहां मैं जा रहा हूं। उसने कहा भाई ब्रैनम वहां पर उपस्थित सेवकों ने कहा कि यदि प्रभु के दूत ने आपको यीशु के नाम में बपतिस्मा देने के लिए कहा है तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन क्या यह आपका अपना विचार है? मैंने कहा यदि प्रभु के दूत ने इसके विपरीत कुछ भी कहा तो वह प्रभु का दूत नहीं होगा। समझे, यदि कोई दूत कुछ भी कहता है जो इस वचन के विपरीत है तो यह एक झूठ ठहरे। और यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वह परमेश्वर की ओर से एक संदेश वाहक है, कहता है कि वह परमेश्वर की ओर से है और आपसे कहता है यह सही है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लिया जाए, तो वो एक झूठा ठहरे। यदि कोई व्यक्ति आपको बताता है ये आपके लिए ठीक है, छोटे बाल काटें और इस तरह की चीजें कि आपको कलीसिया में एक टोपी पहननी चाहिए आवरण के लिए सिर को ढकने के लिए, वो एक झूठा ठहरे। परमेश्वर का वचन ये सत्य है। इनमें से कोई भी चीज जो वचन के विरुद्ध है यह एक झूठ ठहरे। यह वचन है, यह सत्य है, यह बना रहेगा। यही कारण है कि मिकायाह जान सका कि उसकी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से थी, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन के अनुसार थी। जी हाँ श्रीमान, उसका दर्शन परमेश्वर के ठीक वचन के साथ मेल खाता था। ओह यदि आमोस यहाँ पर होता तो वह वचन के साथ बना रहता, यह सही है। लेकिन आप देखें आज हमारे साथ क्या परेशानी है, ये ऐसा ही उनके साथ है। मैं बंद करने जा रहा हूँ। हमारे साथ परेशानी यह है कि जैसे यह उनके साथ थी, उन्हें बुनियाद से बाहर सिखाया गया था। यीशु ने कहा तुमने परमेश्वर के वचन को अपने रीति रिवाजों के द्वारा निष्फल बना दिया है। और वो झूठा बपतिस्मा, पवित्र आत्मा पाने का वो झूठा चिन्ह, उनमें से कुछ ने कहा हाथ को मिलाना, उनमें से कुछ ने कहा अन्य जुबान में बोलना। मैंने शैतानों को अन्य जुबान में बोलते हुए सुना है और हाथ मिलाते हुए भी देखा है। जी हाँ श्रीमान, इसका कोई चिन्ह नहीं। अब ये सारी चीजें इस तरह से, वे सारी चीजें देखो, आप उन रीति रिवाजों को सिखाने के लिए परमेश्वर के वचन से बाहर हो जाते हैं। ये सही है। अब वो ऐसा ही करता, वो आपको अवश्य ही वचन की ओर वापस ले जाता। लेकिन हमारे पास आज हमारे शिक्षक, उन्होंने लोगों को परमेश्वर के वचन की बुनियाद के बाहर शिक्षा दी है। अब ध्यान से सुने, यही है जो उन्होंने वहाँ किया था, यही है जो आमोस उन्हें बता रहा था। जिस परमेश्वर को तुम जानने का दावा करते हो, वही वो एक है जो तुम्हें नष्ट करने जा रहा है। अब हमने उन्हें इससे बाहर सिखाया है, किससे? उस बुनियाद से जो विश्वास की बुनियाद है, जिसे एक बार पेंटिकॉस्टल पूर्व पिताओं को सौंपा गया था। जी हाँ, बाइबल। एक झूठे शुद्धिकरण को सिखाया, एक झूठा बपतिस्मा सिखाया, सब कुछ झूठ 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 मूल से अलग करते हुए। आप इसे विश्वास नहीं करते हैं? बाइबल पर वापस आकर और अपने शुद्धिकरण को लें और अपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लें
और छिड़काव को करना और उन सारी चीजों को, और वापस आकर देखें कि क्या यह वचन के अनुसार है। यही वो तरीका है, पता लगाएं कि क्या यह बुनियाद पर है। समझे, वे बुनियाद से बाहर हैं। जो पौलुस ने कहा कि बाइबल कहती है कि वो कि परमेश्वर की कलीसिया प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा पर बनी है। भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को एक सा होना है, निश्चय ही। क्या हम वचन की उस बुनियाद से हटकर सांप्रदायिक बुनियाद पर चले गए हैं? अब सुनना, मैं बंद कर रहा हूँ। अपने आत्मिक सुनने के उपकरण को लगा लें। सुनना, हम वचन की बुनियाद से बाहर आ गए हैं और एक संप्रदाय की बुनियाद पर हैं। मैं इस विषय पर कब तक बने रह सकता हूँ? और 3 घंटे तक। वचन की बुनियाद से हटकर सांसारिक सुख विलासों की बुनियाद पर सांसारिकता, अनैतिकता कलीसिया में रेंग कर अंदर आ रही है। वचन से हटकर मत सिद्धांतों की ओर। मुझे इसे प्रचार करने के लिए 3 सप्ताह का समय लगेगा, आधा तक ही। उन 4 टिप्पणियों पर वचन से हट गए हैं, एक संप्रदाय पर चले गए हैं, सांप्रदायिक शब्द पर। जैसे ही वो कलीसिया संप्रदाय होती है, ये ठीक तभी वचन से बाहर हो जाती है। वहाँ कुछ नहीं, केवल एक चीज करना है, ठीक वापस आ जाएं जहाँ पर इसे छोड़ा है और फिर से वहाँ जाएं, वचन की ओर वापस आ जाएं। ये सही है, पश्चाताप का अर्थ है लौटो, मुड़ जाओ, पूरी तरह दिशा बदल दो। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो ठीक है। सुख विलास का संप्रदाय, संप्रदाय का एक बुनियाद, मेरा मतलब सुख विलास की, सांसारिकता की बुनियाद, मत सिद्धांत की बुनियाद, और इस सभी ने मिलकर एक अनैतिक भ्रष्टता, आत्मिक भ्रष्टता को जन्म दिया। वो एक सच्चा भविष्यवक्ता होने पर वो हमारे अंदर भी बिल्कुल ठीक वही देखेगा जो उसने उनमें देखा था। यदि वो आज यहाँ इस मंच पर खड़ा होता था और मैं कहता, भाई अमोस, परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता, आप जो नीडर हैं, यहाँ आकर और मेरे स्थान को लें, वो इस वचन का प्रचार करेगा। उसे तो करना ही होगा, वो एक भविष्यवक्ता है। तो ठीक है, वो इसे बिल्कुल ठीक वैसे ही प्रचार करेगा जैसा ये लिखा हुआ है, ठीक जो हम अभी कह रहे हैं। तो ठीक है, वो उनमें वही देखेगा जो वह हम में देखता है, अनैतिक सड़न। अब देखो मित्रों, यहाँ पर कितने लोग हैं इस वर्तमान कलीसिया में, अभी यहाँ पर हैं, जो देखते हैं कि संसार अनैतिकता की सड़न में है। क्यों? हम जानते हैं कि ऐसा है। क्या मामला है? यह वचन से बाहर हो गए हैं, सही है। तो ठीक है, आमोस ने कभी भी सरकार को दोषी नहीं ठहराया। क्या आपने उस पर यहाँ ध्यान दिया है? जब आप घर जाकर जब आप इसे पढ़ते हैं, उसने कभी भी सरकार को दोष नहीं दिया। उसने ऐसी सरकार को चुनने के लिए कलीसिया को दोषी ठहराया। आप राजनीतिक के लोगों, मुझे थोड़ी देर के लिए इसे आपके अंदर गहराई तक डालने दो। यहाँ और दुनिया भर में जहाँ भी यह जाएगा, कलीसिया ने यारोबाम जैसे व्यक्ति को चुना। सोचता हूँ कि क्या आपने, हमने भी लगभग इसी काम को नहीं किया है। हम कहते हैं कि यह एक अच्छी सरकार है। सरकार चट्टान पर घर नहीं बना सकती, जब लोग रेत पर घर बनाने को चुनते हैं, क्या यह बना सकती है? मत कहो हमारी सरकार, हमारी सरकार, यह तो आप हैं राष्ट्र, यह तो लोग हैं, हम कैसे कर सकते हैं? सेवक ने मुझसे कहा, कहा भाई ब्रैनम, कहा देखो मैं जानता हूँ कि आप उसमें सही हैं, लेकिन कहा यदि मैं ये प्रचार करूँ तो मेरा संप्रदाय मुझे बाहर निकाल देगा, मेरे लोग मुझे कलीसिया से बाहर निकाल देंगे। कहा मैं कभी भी कोई और उपदेश प्रचार नहीं करूँगा। मैंने कहा कुछ भी हो, इसका प्रचार करो। जी हाँ श्रीमान, यह परमेश्वर का वचन है, आप जिम्मेदार हैं। यदि आप परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता हैं, तो आप वचन के साथ बने रहेंगे, यदि नहीं तो आप अपने संप्रदाय के साथ बने रहेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से हैं। देखो नहीं श्रीमान, हम नहीं बना सकते। सरकार एक ठोस चट्टान पर घर नहीं बना सकती है, जब लोग धसती हुई रेत पर सुख विलास के घर के लिए वोट दे रहे हैं। देखो हम क्या चाहते हैं, आइए हम अब 1 मिनट लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको नहीं थका रहा हूँ, लेकिन आइए देखें कि हम क्या चाहते हैं। बस 1 मिनट, मैं इस टिप्पणी को नहीं छोड़ सकता जो यहाँ लिखा है। देखो हम क्या चाहते हैं, हमारे टेलीविजन की ओर देखो, यही है जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं इसमें से कुछ हास्य कलाकार वहाँ खड़े होकर और सभी प्रकार के गंदे चुटकुले सुनाएं, और हम बुधवार की रात को प्रार्थना सभा के बजाय घर पर ही बने रहें, या प्रचारक जल्दी छोड़ दे ताकि आप जाकर और इसे देख सकें।
कोई पुरानी अश्लील गंदी पांच या छह बार विवाहित वेश्या गंदे चुटकुले सुनाती है, कामुक वस्त्र पहनती है और हर तरह की हरकतें करती है और आप परमेश्वर के भवन से प्रेम करने की तुलना में आप उसे अधिक पसंद करते हैं। यह दर्शाता है कि आप में किस प्रकार की आत्मा है। हम अनुमति देते हैं, हम लोग यदि इस राष्ट्र के लोग हमारी सरकार को पत्र लिखें, मान लो कि 10 करोड़ पत्र सरकार तक पहुंच जाएं कि इन गंदे कार्यक्रमों को बंद करो, उन्हें यह करना ही पड़ेगा। हम ही वो लोग हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो गंदगी को चाहते हैं, इसलिए हमें वही मिलता है। रेडियो के कार्यक्रम को देखें, ओह प्रभु, युगों की चट्टान जैसी चीजों को तो तोड़ मरोड़ कर बदल दिया। पुराना मजबूत क्रूस गीत को घुमाकर रॉक एंड रोल में कर दिया। पुराना मजबूत क्रूस, जी हाँ, निश्चय ही हमारे रेडियो और टेलीविजन पर। कुछ समय पहले तो छोटी छोटी लड़कियों को भी ऐसे मनोरंजन का हिस्सा बना दिया। हर चीज जितनी अनैतिक हो सकती है उतनी अनैतिक हो चुकी है। यही है जो हम पसंद करते हैं। यह किसके द्वारा प्रायोजित किए गए हैं? बियर, विस्की, सिगरेट, राष्ट्र का पैसा। वे क्या करते हैं? उनके टैक्स के पैसे को लेते हैं जो टैक्स के लिए सरकार के पास जाना चाहिए, और ये उनके द्वारा दिखाए जाने वाले गंदे टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए भुगतान करते हैं। पेंटिकॉस्टल वे उन अश्लील गंदी तस्वीर को देखने को नहीं जाया करते थे जब उनके इस तरह के नाटक होते थे। शैतान ने आपके सामने एक चीज को रख दिया, आपके घर में टेलीविजन लगा दिया। एक सच्चे भविष्यवक्ता का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन आइए हम सत्य के साथ बने रहें। जी हाँ श्रीमान, हमारे विज्ञापनों की ओर देखें। महिलाएं हाथ में सिगरेट लिए बाहर खड़ी रहती हैं। देश की हर एक छोटी इजाबेल, मैंने जाकर एक दिन मैंने एक अजीब चीज देखी। वहाँ एक महिला थी जो बच्चों को लेने के लिए वहाँ स्कूल में आई थी। जब मैं बच्चों को लेने के लिए वहाँ गया तो कड़ाके की ठंड होने पर भी उसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। उनमें से हर एक के पास सिगरेट थी। जैसे ही वे वहाँ पहुँच कर रुकते, अगर उनके पास सिगरेट जलती हुई न होती तो वे तुरंत सिगरेट को सुलगा लेते और देखो मैं कैसे सही महसूस कर रही हूँ, उस हाथ को दरवाजे के बाहर इस तरह से बाहर लटकाए हुए, उसके हाथ में सिगरेट है। और आप इसके लिए कुछ तो कहें, ओह उन्हें गुस्सा आ जाता है। निश्चय ही आप एक मदमस्त लड़के या एल्विस के लिए कुछ कह दें या उनमें से वहाँ बाहर किसी एक के लिए, तो वे आपको गोली मार देंगे। और सरकार उनका समर्थन करती है क्योंकि वे केवल किशोर आयु के हैं। ओह इसमें कोई बात नहीं, उन्हें समझ नहीं है, वे किशोर आयु के हैं, इसे अनदेखा करें। अब आप समझ गए होंगे कि एक सच्चे भविष्यवक्ता का क्या अर्थ होता है, उसके मार्ग का। कलीसियाओं में इन गंदे सपने देखने वालों की ओर देखो, उनके संप्रदाय के साथ वे आपकी पीठ पर गोली मार देंगे। केवल एक ही चीज उन्हें ऐसा करने से रोकती है, वो है परमेश्वर की दया। जब तक संदेश लोगों तक नहीं पहुंच जाए, शैतान आपको गोली मार डालेगा यदि वो ऐसा कर सकता है। सही है, लेकिन संदेश को जाना ही है। मैं प्रभु वापस लौटाऊंगा, यह सही है। मैं इन पत्थरों में से इसे खड़ा करने में सक्षम हूँ, यह सही है। तो ठीक है, हमारे चलचित्र के नाटक, हमारे विज्ञापन, हमारे सुख विलास को चाहने वाले पापी खुद को मसीही कहकर बुलाते हैं। वे लोग जो स्वयं को मसीह कहकर बुलाते हैं, वे सुख विलास के चाहने वाले वासना प्रेमी हैं। महिलाएं अनैतिक वस्त्र पहनती हैं, पुरुष उनकी ओर देखते हैं, उन पर सीटी बजाते हैं, बाहर जाकर अपने आप को मसीही कहते हैं। क्यों? उनके पास यहाँ तक यह फ्लोरिडा कैलिफोर्निया में यह एक बड़ी बात है कि उनके पास अब बड़े बड़े क्लब हैं। सारे पुरुष एक साथ एकत्र होकर और अपनी चाबी को अंदर फेंकते हैं और महिला अंदर जाती है और वहाँ उन चाबियों में से एक चाबी को उठाती है और यह जिसकी भी चाबी होती है उसकी पत्नी को घर ले जाता है। वे एक सप्ताह तक साथ रहते हैं, फिर वापस आते हैं, चाबी को फेंकते हैं, फिर से चाबियों को अंदर से उठाती हैं। समझे, यह क्लब है। नाजायज जन्मे बच्चे और बाकी की हर एक चीज, सुअर का बैरी सुअर, कुत्ते का बैरी कुत्ता, क्या माजरा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने वचन को छोड़ दिया है। वे नहीं जानते कि मर्यादा का क्या मतलब होता है। यहाँ बाहर छोटे तंग कपड़े पहने हुए और इस तरह की चीजें करती हैं और पुरुष उन पर वासना की दृष्टि रखते हैं और सोचते हैं कि वे सभ्य हैं। बहन, हो सकता है आपने कुछ भी गलत नहीं किया हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप शैतान का एक उपयोग करने का साधन हैं और न्याय के कटघरे में यहोवा यो कहता है, आप वह विचार करने के लिए उत्तर को देने जा रही हैं और आपका प्राण नाश हो जाएगा। आप बेहतर जानते हैं, जो भी है अब आप इसे जानते हैं
तो ठीक है, हमारी सारी व्यवस्था भ्रष्ट और सड़ चुकी है। यह हमारे लोग ही हैं जो भी चाहते हैं, जैसे घर का एक भला मनुष्य। तो ठीक है, यदि एक मनुष्य जो घर का एक भला मनुष्य है आपकी सरकार को दोष देता है, यही कारण है कि हमारे लड़कों को यहाँ भेजा जाता है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है। सही है, क्योंकि ये हमारा अपना भ्रष्टाचार है। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं और सही प्रकार की सरकार और बाकी की हर एक चीजों के लिए वोट देते हैं, तो यह एक अद्भुत स्थान होगा। यह सही है, हमारे बीच कोई युद्ध नहीं होगा। नहीं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और शक्ति होता है। हमारे जवानों को बाहर भेजते हैं और वे मारे जाते हैं और काट डाले जाते हैं और बाकी की हर एक चीज होती है। इसका कारण हमारे अपने कार्य हैं जिसने यह परिस्थिति पैदा की है। परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा कहा है और वो नहीं बदलता है, वो बस एक सा है। ऐसा आपके अपने लोग ही चाहते हैं। जैसे घर का एक भला व्यक्ति क्या हो, यदि वो एक भला मनुष्य हो, वो सही काम करना चाहता है, वो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है और उसका एक सुख विलास अनैतिकता को चाहने वाला परिवार है। एक व्यक्ति क्या करेगा जब उसकी पत्नी छोटे छोटे कपड़ों को पहनना चाहती है और कामुक दिखने वाले कपड़े पहनना चाहती है और बाहर जाकर और एक इजाबेल की तरह व्यवहार करती है। उसकी बेटियां और उसके सारे बच्चे और वे सारे के सारे, उसके पिता ने उसके छोटे लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे प्रेम किया और थपथपाया और चूमा और बिस्तर पर रखा और उसके लिए प्रार्थना की। खड़ा होकर कहता है, मेरा बूढ़ा बाप पागल है, वह केवल बाइबल के विषय में ही सोचता रहता है। ऐसा मनुष्य अपने परिवार के साथ क्या कर सकता है? हमारी सरकार में भी यही बात है, यहाँ के लोगों के बारे में भी। सरकार को दोष मत दीजिए, पिछड़ी हुई कलीसियाओं के इस झुंड को दोष दें उनकी राजनीति में इस तरह की चीजों को डालने के लिए जो उनके पास है। वे इसे चाहते हैं, यही कारण है कि उन्होंने इसके लिए वोट दिया और यही कारण है कि उन्हें यह मिला है और यही कारण है कि परमेश्वर का न्याय उन पर है। और वे जो बोएंगे वही काटेंगे, वे अभी बो रहे हैं और वे बाद में काटेंगे। देखो, ओह हम पागलपन से ग्रस्त हो गए हैं। ओह हाँ, रूस में धन के बल पर अपना मार्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साम्यवाद में धन के बल पर अपना मार्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए धन से आप परमेश्वर के इन दानों को नहीं खरीद सकते। वहाँ एक व्यक्ति था शमोन, एक दिन ऐसा करने की कोशिश की और पतरस ने कहा, तुम अपने धन के साथ नष्ट हो जाओगे। हम शमोन ओझा की भूमिका निभा रहे हैं जो परमेश्वर के दान को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। वचन पर वापस आ जाएं, परमेश्वर के पास वापस आ जाएं, मसीह के पास वापस आ जाएं, फिर साम्यवाद की चिंता न करें। हम सही व्यक्ति को वोट देंगे। हमारे पास अब्राहम लिंकन जैसा दूसरा व्यक्ति होगा, जॉर्ज वाशिंगटन, कोई तो जो सच्चे मनुष्य थे। वहाँ उस सरकार को दोष मत दो, अपने आप को दोष दो। यही है जो आमोस कहेगा और यही बात जो परमेश्वर का कोई भी सच्चा भविष्यवक्ता भी कहेगा। यदि वह परमेश्वर के वचन को जानता है, यदि वो एक सच्चा भविष्यवक्ता है, तो वो वचन को जानता है क्योंकि उसके पास आता है। इजराइल उनके बनाए हुए शत्रु के साथ उनके गठबंधन में थे। पहले तो उन्हें अपने शत्रु के साथ एक गठबंधन को करने से पहले उन्हें परमेश्वर के वचन से दूर होना था। और इससे पहले कि हम कभी भी अपने शत्रुओं और चीजों के साथ एक गठबंधन बना सकें, हमें परमेश्वर के वचन से दूर होना होगा। अब भी वही रोम को अधिकार करने दे रहे हैं। क्यों? हम ऐसा हर समय करते रहते हैं। उसने सरकार को हाथ में ले लिया है, वह स्थान को हाथ में ले रहा है, उसने लोगों को हाथ में ले लिया है, अब वो कलीसियाओं को हाथ में ले रहा है। हम क्या कर रहे हैं? शांत बैठे हुए हैं, उनके साथ सहमत हो रहे हैं। ओह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे यह इस तरह से हो या उस तरह से हो, जो भी है यह सब परमेश्वर का है। तुम दरिद्र, दयनीय, पिछड़े हुए नाम के कहलाने वाले भविष्यवक्ता हो, तुम्हारे साथ क्या मामला है? वे परमेश्वर के वचन और इन चीजों के विषय में नहीं जानते, वे वचन का अध्ययन नहीं करते हैं, उन्हें इसका एहसास नहीं है। वे कहते हैं कि साम्यवाद सारे संसार पर अधिकार कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रोमनवाद संसार पर अधिकार करने जा रहा है और यह इसे मसीहत के नाम के नीचे कर रहा है। क्या बाइबल में यीशु ने नहीं कहा, यह इतना नजदीक होगा, इतना तक कि यह बिल्कुल चुने हुओं को भी भरमा देगा, यदि संभव हो तो? आज हमें जिसकी आवश्यकता है, मैं यह कहकर बंद करने जा रहा हूँ, अब मैं बंद करने जा रहा हूँ, आज हमें एक और सच्चे भविष्यवक्ता की आवश्यकता है। आमीन। हमें एक मनुष्य की आवश्यकता है जिसके पास परमेश्वर का वचन आए। जी हाँ भाई, उसे ठुकराया जाएगा और उसे निकाला जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन वो निश्चित रूप से एक विस्फोट करके छेद करेगा। वो जी हाँ, वह निश्चय ही ऐसे बीजों को डालेगा यहाँ तक चुने हुए लोग इसे पा लेंगे। यह सही है। हमें एक भविष्यता की आवश्यकता है। हमें एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जिसके पास वचन का सही अनुवाद आता हो, कि परमेश्वर उसके जरिए से बोले और वचन को प्रमाणित करे ताकि इसे सत्य बनाए। यही है जिसकी हमें आवश्यकता है। और भाई, मलाकी चार के अनुसार हमसे एक प्रतिज्ञा की गई है वापस लौटाने की। क्या लोगों का विश्वास बाइबल की ओर लौटाता है? हमसे उस एक की प्रतिज्ञा की गई है, वो इसे करेगा। आमोस जानता था, जी हाँ श्रीमान, आमोस जानता था इज़राइल उसके अधर्म के चाहने वाले जल्द ही उसे नाश कर देंगे, और आज के उनके अधर्म के चाहने वाले जल्द ही उन्हें नष्ट कर देंगे। वही सांप्रदायिक मत सिद्धांत और चीजें जिसमें उन्होंने खुद को बांध लिया है। आप पेंटिकॉस्टल लोग, यही वो चीज है जो आपको नष्ट करने जा रही है। आपके मत सिद्धांत और संप्रदाय, आप अपने आप को ठीक उस ओर बांध रहे हैं। पशु की छाप को लेते हैं और ये जानते भी नहीं। ये आपकी आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा डाले हुए है। निश्चय ही यह एक बहिष्कार है। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप इसके सदस्य हैं या तो आप सदस्य नहीं हैं। देखा, आप जरा प्रतीक्षा करें, बस जरा सा रुकें, बस थोड़ा और समय, तब आप कहेंगे तब मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा। नहीं, आप नहीं निकलेंगे। आप इसमें पहले से ही हैं। आप पहले से ही छाप लगा चुके हैं। आप अपने ऊपर छाप के साथ पाए गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा फूट फूट कर रोया, जबकि वो अच्छी तरह जानता था, लेकिन वह फूट फूट कर रोया। पश्चाताप करने के लिए एक स्थान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इसे नहीं पा सका। तब आप वहीं पर बने रहेंगे? अभी भागने का समय है। आमोस जानता था कि उनके अधर्म के चाहने वाले जल्द ही उसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कलीसिया ने उसे छोड़ दिया था। परमेश्वर और उसके वचन को, जीवन के मार्ग को, वे परमेश्वर के जीवन के मार्ग से दूर चले गए और अपना खुद का मार्ग बना लिया। ओह, वचन उनके लिए रुकावट का कारण था, और आज भी यही बात है। परमेश्वर का वचन कहलाने वाले मसीह के लिए एक रुकावट का कारण है। उसे यीशु मसीह के नाम में पानी के बपतिस्मे के बारे में बताएं, उसे पवित्र परमेश्वर के विषय में बताएं। इससे वो और खैर, वे कहते हैं तो ठीक है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, तो फिर आप फिर भी छोटे छोटे बाल क्यों रखती हैं? आप फिर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा क्यों लेते हैं? आप क्यों फिर भी इन दूसरी चीजों पर विश्वास करते हैं जो आप विश्वास करते हैं, और उस तरह से क्यों व्यवहार करते हैं? ये यही दिखाता है, आपके फल इसे साबित करते हैं। यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानते हो। जी हाँ, समझे, इससे तो यही पता चलता है कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ, यदि आमोस यहाँ पर होता तो वह उनकी व्यवस्था के विरोध में चिल्लाता। आप ये जानते हैं? अब मैं बंद करने से पहले एक पद को पढ़ने जा रहा हूँ, तीसरे अध्याय का आठवां पद, और आइए पढ़ते हैं। सिंह गर्जा है, कौन न डरेगा? प्रभु ने बोला है, कौन भविष्यवाणी न करेगा? सुनना, अब बंद करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे खेद है कि आपको आधा घंटा ज्यादा तक रोके रखा, लेकिन देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक शिकारी हूँ, मैं शिकार करता हूँ। मुझे खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कुछ तो दिया है। एक दिन जब इस तरह से बंदूक की गोली चल गई, तो मैं सीधे नीचे चला गया यह देखने के लिए कि क्या मैं फिर से गोली चला सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे मुझे डर लगे। यदि मेरी सड़क पर कोई दुर्घटना होती थी तो मैं गाड़ी चलाना नहीं छोड़ूंगा। यदि मैं जमीन पर चलता हूँ और मेरे पैर के अंगूठे को कालीन पर अटक कर ठोकर लग जाए और मैं खिड़की से बाहर जा गिरूं, तो भी मैं चलना नहीं छोड़ूंगा। समझे? नहीं, नहीं, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा सबक दिया। यह शैतान था, यह परमेश्वर नहीं था। समझे? यह शैतान था। अब मैं इसके आत्मिक अर्थ को जानता हूँ। इस समय इस कमरे में अभी हम तीन लोग हैं जो जानते हैं कि यह क्या है, और ये आपके सिर के बाल खड़े कर देगा, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। समझे? बस ये तीन लोग, एक पुष्टि के लिए। अब ये सब ठीक है, सब ठीक है। परमेश्वर इसके बारे में सब कुछ जानता था और इसकी पहले से ही चेतावनी दी थी और बाकी की हर एक चीज की, और हम इसे जानते हैं। यह कुछ हद तक मेरी गलती थी और मुझमें कुछ तो था। मैंने एक बार एक व्यक्ति का पक्ष लिया जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसे कड़ी फटकार लगा सकता था, देखा, लेकिन ऐसा न करने के कारण मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो फिर इसलिए हम, कोई बात नहीं, यह मेरी गलती थी, अब इसकी क्षमा मिल चुकी है और हम आगे बढ़ेंगे। समझे? जी हाँ। आमोस यह आठवां पद, सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? मैंने अफ्रीका के जंगलों में शिकार किया है, मैं वहाँ पर भी गया हूँ जहाँ शेर थे, वो जानवरों का राजा है। मैं रात के समय जंगलों में सोया हूँ और कर्कश आवाज और लकर बग्गे की आवाज को सुनता हूँ, हंसने जैसी आवाज और जोर से चिल्लाना और उन भिन्न भिन्न जानवरों की, और फिर उनमें से कुछ लकर बग्गे आवाज करते हैं। जब वे चिल्लाते हैं तो बस ये आपके खून को जमा देंगे, और वहाँ तेंदुओं के साथ और रोने की आवाज और बाकी की हर एक चीज और भौरे और बंदर और लंगूर और हजारों गुना हजारों आवाजें, चीखने जोर से चिल्लाने की, हर जगह घूमिए, आप हर प्रकार की आवाजें सुन सकते हैं, लेकिन एक शेर को गरजने दो, यहाँ तक वो भौरे भी शांत हो जाएंगे। यह एक मृत्यु सा सन्नाटा छा जाता है, वे शांत हो जाते हैं, किस लिए? उनके राजा ने बोला है, आमीन। यदि सिंह गरजता है तो कौन नहीं डरेगा? तो जब परमेश्वर बोलता है कौन भविष्यवाणी करने से रुक सकता है? जब परमेश्वर बोलता है भविष्यता पुकार उठता है। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? सच्चा भविष्यता पुकार उठता है। मित्रों, उसने बोला है, उसके बाद उसके राज्य की हर एक सृष्टि को ध्यान से सुनना चाहिए कि उसने क्या कहा। यदि एक शेर पहचान सकता है कि कुछ तो गलत है, जब वो गरजने लगता है तो उसके राज्य की हर चीज शांत हो जाती है, वे सुनते हैं, यहाँ तक कि छोटे कीड़े भी। अब भी वह उस शेर के राज्य में है, वह लकर भग्गे की खून को जमा देने वाली डरावनी चीख, वह चुप हो जाता है। वह हाथी वहाँ पर है जो शेर को उठाकर और उसे अपने सूंड से घुमा सकता है, व्यों व्यों, और एक शेर को गरजने दो, वह चुप हो जाएगा और शांत खड़ा रहेगा। वो अफ्रीकी भैंस जो नाक से फुंकार सकती है, ऐसा दिखता है जैसे उसकी नाक से उड़ती हुई आग निकल रही हो, जब एक शेर उस पर कूदता है तो ये यहाँ तक उसकी कोई हानि भी नहीं पहुँचाता। वो गेंडा जो उसके 7 टन के कवच और उसके बड़े थूथन के साथ उसे छेद देगा, एक शेर को गरजने दो, वो वहीं अपने रास्ते पर रुक जाएगा। क्या मांझ रहा है? उसके राजा ने बोला है, देखा, वह सुनना चाहता है कि क्या बोलने जा रहा है। और जब परमेश्वर बोलता है, भविष्यवक्ता पुकार उठता है, और फिर उसके राज्य को ध्यान से सुनना है कि वो क्या कह रहा है। परमेश्वर ने बोला है, उसके राज्य की हर सृष्टि सुने कि वो क्या कह रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे यहूदा के गोत्र के सिंह, उठ और गरज। आप इस अंतिम दिन में गरज रहे हैं, आपकी आंखें सिकुड़ी हुई हैं, आप नीचे की ओर देख रहे हैं, आप इस नाम के कहलाने वाले मसीही राष्ट्र और दुनिया के पाप को देख रहे हैं, आप इस राष्ट्र के पाप को देख रहे हैं जबकि इसे बहुमूल्य लहू से खरीदा गया है। आप देख रहे हैं कि कैसे संप्रदाय आपके वचन को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखें कैसे झूठे भविष्यवक्ता झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के सत्य को वे इनकार कर रहे हैं। हे यहूदा के सिंह, गरज, आपके भविष्यवक्ताओं को पुकारने दो। जब परमेश्वर बोलता है, भविष्यवाणी करने से कौन रोक सकता है? यह परमेश्वर का वचन है जो बाइबल में से आ रहा है, भविष्यवक्ता के जरिए से आगे बढ़ रहा है। वह भला कैसे चुप रह सकता है? यदि वह चुप रहे तो वो फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हे परमेश्वर, आपके भविष्यवक्ता को गरजने दो। प्रभु परमेश्वर, अपने संदेश को गरज और आपके राज्य की प्रत्येक सृष्टि ध्यान से सुने। होने पाए वे रुक जाएं, होने पाए स्त्रियां रुक जाएं और अपने आप को जांचें, होने पाए वे पुरुष रुककर और अपने आप को जांचें, होने पाए हर एक प्रचारक जो इस टेप को सुनता है रुककर और अपने आप को जांचे, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह गरजता है और सच्चा वचन भविष्यवक्ताओं के पास आता है, बोलता है, चिल्ला उठता है, पश्चाताप करो और वापस मुड़ो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। परमेश्वर, मैं संदेश को टेप पर और इस दृश्यमान श्रोतागण में आज सुबह आपको समर्पित करता हूँ। भरोसा करने के लिए आप इसकी स्वीकृति दें और परमेश्वर के हर बेटे और बेटी को बुलाएं जो कभी इस टेप को सुनते हैं या आवाज की ध्वनि के नीचे बैठे हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वे पश्चाताप की ओर फिरें। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, यदि आप आमोस को यहां भेजते तो वह इसी चीज के लिए पुकार उठता, क्योंकि वह नहीं पुकार सकता, लेकिन यदि वह प्रभु का भविष्यवक्ता है तो वह वचन को आगे भेजने वाला है। उसे वचन के द्वारा भेजा गया है, वचन के साथ, और वो स्वयं वचन होता है। अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसे होने दें। आमीन।